हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
पंखा पहले कहीं लगा है ना, हमको पंखे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक बार मेरे सामने पंखा लगा दिए थे, कोई टेबल था, मैं कथा के लिए बैठा तो मेरा मुख सूख रहा था, मुंह खुलता था, हवा का झोंका आ रहा, मुझे क्या हो गया मुझको, तब समझ में आ गया। मैं कहीं पंखा हटाइए तब मैं प्रवचन कर सका, थोड़ी भी हवा मुझको अच्छी नहीं लग पाती प्रवचन के समय। ऐसे इसको मैं बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं।
अथ द्विचत्वारिंशोऽध्याय।
चत्वारिंश का अर्थ 40 और द्वि का अर्थ 2, 40 और 2 42वां अध्याय।
श्री शुक उवाच। अथ ब्रजन राज कथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनां पप्रच्छ विलोक्य कुब्जां जुवतीं वराननां। पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन् रसप्रदः का त्वं वरुर्वे तदुभानुलेपनम् कस्यांगने वा कथय स्वसाधुनः। देह्यावयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिराद् भविष्यति। सैरन्ध्री उवाच। दास्यस्म्यहं सुन्दर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपते रति प्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। रूपपेशलमाधुर्य हसितालापवीक्षितैः धर्षितात्मा ददौ सान्द्राम् उभयोरनुलेपनम्। सब लोग श्लोक पर नजर रखिए। ततस्तावंगरागेण स्ववर्णेतरशोभिना संप्राप्त परभागेन शुशुभातेनुरञ्जितौ प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननां ऋज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्विअङ्गुल्युक्तान् पाणिना द्वयङ्गुल्युक्तान् पाणिना
प्रगृह्य चुबके अध्यात्मा उदनी नमदच्युतः सात गर्ज समानांगी बृहत् श्रोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ सुदामा मालाकार पर कृपा करने के बाद ब्रजन वॉकिंग करते हुए चलते हुए राजपथ से माधव स्त्री को गृहितांग दिलेप भाजना जो अंगराग से भरे विविध बर्तनों को एक थाली में ले जा रही थी। विलोक्य उसको देखकर कुब्जां जिसके पीठ पर कुब्ज था झुक करके चल रही थी, युवती थी, वरानना मुख बहुत सुंदर था, पप्रच्छ श्री भगवान ने पूछा, यान्ति जाती हुई जो अपने घर से राजा कंस के महल में जा रही थी, उससे प्रहसन हंसते हुए रसद प्रदह जो परम सुख देते हैं या अपने में राग उत्पन्न करते हैं, ऐसे माधव पूछे। सुदामा माली पर अपने भक्त पर कृपा करने के बाद, उनको वरदान देने के बाद, श्री भगवान श्री बलराम जी के साथ और सखाओं के साथ पुनः राजपथ पर चलने लगे। अथ इसलिए लगा रहे सुखदेव गोस्वामी कि सुदामा के घर पर कुछ देर हुई, यही कारण है। चलने में बीच में ब्रेक हो गया था, उसके घर माला पहने अनुलेप लगाया, कई तरह से भगवान की पूजा किया, सत्कार किया, देर हो गई। अतः सुखदेव गोस्वामी फिर से चालू कर रहे हैं मथुरा का भ्रमण। अथ ब्रजन राजपथे न माधव, भगवान फिर राजपथ पर चलने लगे। चलते चलते ठीक यही समय होगा, मथुरा के राजपथ पर जहां बहुत लोगों का आवागमन था, बहुत लोग थे, भरा हुआ सम्मर्द था, बहुत लोग थे, और मथुरा के प्रायः सब लोग रोड पर आ गए थे। जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान का रथ निकलता, इतना चौड़ा रथ है, जैसे रथ यात्रा में भर जाता है, उस तरह से भरा हुआ था मथुरा का वो मार्ग कृष्ण को देखने के लिए। और ऐसे दैनिक जो बाजार करने आते थे या कोर्ट में आते थे, स्कूल आदि में जाते थे, तो आए ही थे, भरा हुआ था। और बीच में चल रहे थे सखाजन श्री बलराम जी और श्याम सुंदर। उस बेचारी ने पहले कृष्ण को नहीं देखा, कुब्जा ने भगवान देखे। वो कौन थी? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूं। यम यह स्वरूप भूता यह साक्षात भू सकते है सत्य भामा यह अंश भूता। भगवान की प्रिया सत्यभामा जी हैं, उनकी साक्षात भू शक्ति, सबको धारण करने की जो शक्ति उसको भू शक्ति कहते हैं, तो भू शक्ति का अंश भूता यह पृथ्वी नाम की प्रसिद्ध भगवान की प्रिया है। और कंसादी असुरों के दुसह भार से भुगनत्व को प्राप्त हुई थी, पीठ पर कुबर हो गया था, कुबर कुब्जा कुब्ज जो था यही असुरों के अत्याचार का भार था उस पृथ्वी पर, तो झुक गई थी भार से, पीठ पर ऊंचा कुछ कुब्ज था तो उससे झुकी हुई थी। ऐसे जनरल कभी वो किसी पर देखती नहीं थी, आती जाती थी रोज, अपने घर में अंगराग तैयार करती थी, चंदन तैयार करती थी। स्वयं ही बता रही है कि राजा कंस को मेरा पीछा हुआ, मेरा साधित अंगराग अति प्रिय है, इस कारण से वो मुझको निवेदन देता है, उसकी दासी हूं। तो जो भी है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परिचय देते हैं कि यह पृथ्वी है परम भक्त है। पृथ्वी का एक गुण है गंध गुण है। अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को इसने गंध अर्पित किया, पृथ्वी का यही गुण है, गंध गुण है पृथ्वी। श्री भगवान इसके चंदन को स्वीकार करके और बहुत ही कृतज्ञ हुए और तत्काल ही सबके सामने उसे परम सुंदरी बना दिए। कोई सामान नहीं जुटाए कि ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जुटाओ, ये करो वो करो थेरेपी के लिए, कुछ भी नहीं, केवल छू दिए और परम श्रेष्ठ सुंदरी हो गई। उसका कुब्ज भी चला गया और तीन जगह से वो टेढ़ी थी, कुब्ज तो चौथा एक दोष था, कुब्ज तो था ही, तीन जगह से टेढ़ी थी, गर्दन से टेढ़ी थी और कमर टेढ़ी थी और उरह जांघ के पास भी टेढ़ी थी, जांघ भी टेढ़ी थी, तीन जगह से टेढ़ी थी, तो उसको त्रिवक्रा कहा जाता था। इसने स्वयं ही भगवान से बताया कि मुझे लोग त्रिवक्रा कहते हैं, मेरा नाम त्रिवक्रा है, तीन जगह से वक्र है, टेढ़ी है और पीठ पर कुब्ज है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उसका परिचय दे रहे हैं, भगवान की प्रिया पृथ्वी देवी, भगवान की प्रियाओं के अंश भूत पृथ्वी है, पृथ्वी ही अष्टम कुब्जा के रूप में हुई थी और असुरों के दुसह भार से यह झुकी हुई थी। तो श्री भगवान ने देखा चलते चलते, तो परम कृपामय है। देखिए अन्य दृश्य श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, भक्ति जिसमें है उसके तरफ दृष्टि डाल रहे हैं और दुष्ट को भी मारा उन्होंने देखा, वस्त्र मांगा नहीं दिया तो मारा। तो हजारों लोग जहां चल रहे हैं आ रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े लोग अच्छा कपड़ा पहने हुए अच्छा शरीर वाले कृष्ण को सब देख रहे थे, लेकिन कृष्ण किसी पर दृष्टिपात नहीं कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने कुबरी पर देखा, कृपा करना चाहते हैं। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर जानी हैं, सब कुछ जानते हैं, जानते हैं कि मेरा यह भक्त है और कंस की सेवा में लगी हुई है, कंस के अधीन, तो उस पर कृपा करने के लिए पूछते हैं। उसी को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किसको श्री कृष्ण ने देखा? कुब्जा जुवती बरानना, उसके पीठ पर कुब्ज था लेकिन वह थी परम सुंदरी। ये भगवत प्रेयसी है, पीठ पर कुब्र है, तीन जगह से टेढ़ी है लेकिन परम सुंदरी है, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी वराननम कह रहे। वरम आननम जस्या सा वरानना ताम, उसको देख। और दूसरी विशेषता दे रहे हैं युवती, वह युवती थी 16 वर्षीय कन्या के समान थी, सुंदरी थी, परम सुंदर मुख था। इसके द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि वह बहुत सुंदरी थी, तीन जगह से टेढ़ी थी और कुब्जा थी, हाथ में थाली ली थी और थाली में कई कटोरियां रखी गई थी, उसमें अंगराग लेकर के जा रही थी, अथवा थाली में नल ले जाकर के उसको टांगते हैं, सुन ले जाते हैं फूल उल, क्या कहते हैं, लकड़ी का होता है ना, काठ का हल्का, क्या कहते हैं, क्या शब्द है, फूल डाली डाल, उसमें डोलची, राइट ठीक है, डोलची में रख करके विविध बर्तन कटोरियां ले जा रही थी। किसके लिए? राजा कंस की सेवा में जा रही थी। यह पृथ्वी देवी पूर्ण रूप से असुरों के कब्जे में हो गए, पूर्ण रूप से सेवा करनी पड़ रही थी पृथ्वी, है भगवान की प्रिया, भगवान की दासी, लेकिन दूसरे की दासता में लगी हुई। तो भगवान ने इस तरह देखा, बर्तन लेकर के जा रही है, कुब्ज है, ज्योति है, श्रेष्ठ मुख है, यांतिम जो जा रही थी, जो किधर से जा रही थी, श्री कृष्ण किधर से जा रहे थे, रजक को सुखदेव गोस्वामी कहे आयांतम और इसको कह रहे हैं जानतीम। लगता है इस समय श्री कृष्ण जिस तरफ फेस किए हैं उधर कंस का घर पड़ता था, डायरेक्ट नहीं मतलब उसी डायरेक्शन पड़ता था, और यह अभी कंस के घर जा रही थी। तो कृष्ण और सब पर कृपा करते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। श्री कृष्ण मथुरा का दर्शन क्या कर रहे हैं, वास्तव में अपना दर्शन करा रहे थे। जो सुंदर व्यक्ति होता है वो चाहता है कि हमको सब लोग देखे, श्री कृष्ण तो सबसे परम सुंदर व्यक्ति हैं, ये चाहते थे कि हमको लोग देखें। तो भीड़ होती थी तो ये धीरे धीरे जा रहे थे, तब तक बगल से वो ज्योति जा रही थी, कुब्जा जा रही थी, तो भगवान ने देखा, तो देखा तो इस झुंड सखाओं से मुड़ गए, उसके तरफ जाने लगे, तो सब सखा भी गए, श्री बलराम जी भी गए, क्योंकि नंद बाबा ने कहा था कि इसको कभी छोड़ना मत, बाजार में इधर उधर खो जाएगा। तो श्री बलराम जी गए, सखा जन गए, श्री दाम आदि, ये लोग पूछ नहीं रहे कहां जा रहे हो, देखते ही श्री कृष्ण ने पूछा, अथवा जानती का अर्थ आयांती कुछ भी लगा सकते हैं, जो सामने से आ रही थी अथवा बगल से जा रही थी, जो भी चिंतन हो, श्री सुखदेव गोस्वामी इस तरह से बोल रहे थे। यंती का ये अर्थ किया जाए को आ रही थी, यही अच्छा होगा, जो भी हो यांतिम शब्द है, आ रही थी मतलब कहीं बैठी नहीं थी किसी दुकान में या कहीं चबूतरे पर, आ रही थी जा रही थी। तो भगवान ने देखा और देख करके हंसने लगे और उसको रोक करके पूछे, उसके आगे जा करके, वैसे आ रही थी तो आगे खड़े होकर के और पूछे। पूछने के क्रिया विशेषण श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, प्रहसन, हंसते हुए पूछे। कौन पूछ रहा है, कृष्ण न कहकर के रस प्रदह कह रहे हैं, जो रस प्रदान करते हैं, परम सुख देते हैं। अब रस का क्या अर्थ है, कुब्जा को श्रृंगार रस देने वाले और अपने सखाओं को हास्य रस और जनता को अद्भुत रस, ये जो देते हैं उनको रस प्रदह कहा गया। इस लीला में भगवान रस दे रहे हैं, कुब्जा को श्रृंगार रस दे रहे हैं। श्रृंगार का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का प्रेम का जो वार्तालाप होता है उसको श्रृंगार कर, उसको श्रृंगार रस देने वाले और सखाओं को हास्य रस दे रहे। श्रीदाम आदि सखा हंस रहे थे कि इसको क्या जरूरत है, क्या करेगा, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। एक कुब्जा को, सरंध्री को घेर करके और उसे पूछने लगे तो श्री बलराम जी और सखा आदि सब हंस रहे थे, ये क्या तमाशा कर रहा है लेकिन कुछ रोक नहीं रहे थे, टोक नहीं रहे थे। श्री कृष्ण जो कर रहे हैं उसी में उनको आनंद होता, लेकिन अब हंसी आ रही थी तो हास्य रस आ रहा था। तो एक ही लीला से श्री कृष्ण जनता को जो मथुरा के मार्ग पर थी उसको अद्भुत रस दे रहे थे, तो उसको आश्चर्यचकित थी, इतना परम सुंदर ही लड़का किसी से बात नहीं कर रहा है और कुब्जा से बात कर रहा है। उन लोग आश्चर्य से चकित थे, सब देख रहे थे और अपने सखा तो हंस रहे थे खिलखिला करके, और कुब्जा को भगवान श्रृंगार रस दे रहे थे। इस तरह से रसप्रद अथवा रस का अर्थ होता है सुख या राग। श्री कृष्ण में जो राग है वही सबसे बड़ा रस है, भक्ति ही रस है, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति एक रस है और भक्ति का रस अनंत है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद इसको सिंधु कहते हैं। अनंत है, अपरिसीम है। भगवान के साथ कितने प्रकार से भक्ति की जाती है, कितने प्रकार से प्रेम किया जाता है, यह अथाह समुद्र की तरह। और ये रस क्या है, भक्ति, भक्ति एक रस है, यह रस अमृत है, अमर रस। अमर का अर्थ है जो शाश्वत है, कृष्ण के साथ जीव का संबंध नित्य है, इसको अमृत कहते हैं। अस्थायित्व के लिए अमृत अथवा स्वाद के लिए भी अमृत कह रहे हैं, परम स्वादिष्ट है। तो यह रस का समुद्र है, भक्ति रसामृत सिंधु, यह श्री कृष्ण दे रहे हैं। इनका स्वभाव है समस्त जीवों को अद्भुत अनंत सुख देते हैं, रस देते हैं और सुख देते हैं। सुख देना कृष्ण का सहज स्वभाव है। तो रसप्रदय चलते हुए हंसते हुए ज्योति से बात कर रहे हैं, इसके द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की सहज रसिकता को व्यक्त कर रहे हैं। सहज रसिक है, इसका अन्वय इस तरह से है, अथ रसप्रद माधव राजपथे न व्रजन गृहीतांग विलेप भाजनाम वराननाम जुवतीम कुब्जाम जानतीम स्त्रियम प्रहसन पप्रच। कुब्जा के विशेषण को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, फिर भगवान के विशेषण को तो इस तरह से पूछ रहे, हंसते हुए पूछ रहे, हंस क्यों रहे हैं श्री कृष्ण? इस विषय पर भक्त लोग बहुत विचार करते क्यों हंस रहे हैं। तो भक्तों का अपना अपना भाव होता है, लिखते क्यों हंस रहे हैं। ये हमें श्री हरिश्री जी के भाव को कुछ व्यक्त करना चाहता हूं, क्यों हंस रहे हैं। भगवान ने सोचा, हरिश्री जी कहते हैं, वामनो हम इयम कुब्जा योगो वयम मधुना वयः सर्वलोकाद् भूतकरः स्यादिति प्राह सद हरिः। भगवान ने सोचा मैं भी इसी तरह से वामन हूं, या तो है या तो, चूंकि वामन देव में कृष्ण में कोई भेद नहीं, वही बने हुए हैं। जब अहम वामन, मैं वामन हूं, और यह कुब्जा है, अच्छा संजोग इसका और हमारा हुआ है, मतलब ये ठीक जोड़ी है। ये समस्त सभी लोगों को अद्भुत लगेगा, यह सोच करके हरि ही प्राह सब हंसे। एक कारण है बता रहे हैं, दूसरा कारण क्या है हरिश्री जी बताते हैं। श्लाघ्यम अप्सरसाम रूपम गात्रम तु कुटिलाकृति अहो विधात्री चातुर्जन इद्रिग इत्य हसद हरि। भगवान ने सोचा कि अहो रूप अप्सराओं के समान परम सुंदर है, देवताओं की स्त्रियों के समान, और गात्रम तो कुटिला करती, और गात्र टेढ़ा है, शरीर टेढ़ा है, क्या विधाता की चतुराई है, कैसे जब इतना सुंदर रूप है, मुख इतना सुंदर है, पर शरीर टेढ़ा है, कुब्ज है, अद्भुत विधाता की रचना है। ये सोचकर शायद भगवान को हंसी आ गई। एक दूसरा कारण बता रहे, तीसरा कारण क्यों हंसे। जन्नो बिहाय रमसे गनया जथासौ सौंदर्य भू रखिल लोक विलक्षण प्रायो भवेदिति गोपसुता न योगे हास्यम तदुत्तर मिति प्रभुणा देवोदी। भगवान ने सोचा कि जब मैं ब्रज में जाऊंगा तो श्री गोपी जन हमसे पूछेंगे कि आपको वही स्त्री मिली मथुरा में उससे प्रेम करने के लिए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ये विचार करके भगवान को हंसी आ रही है, उस समय क्या उत्तर दूंगा, अथवा इस हंसी के द्वारा उत्तर दे रहे हैं, स्मरण आ रहा है। इसके पहले भगवान असंख्य श्री गोपी जनों से रास विहारादि किए हैं, लीला किए हैं, मथुरा में आने पर पहली बार एक स्त्री मिली, तो वे पूछेंगे कि सर्व विलक्षणा परम सुंदरी वही मिली मथुरा में, तो इसका मानो उत्तर दे रहे हैं हंसते हुए। कभी कभी ऐसे उत्तर दिया जाता है, कुछ कोई ना उत्तर देकर के हंस देते हंसते हैं, और ठीक है आप कुछ भी कहिए ऐसा, तो मानो भगवान ने इस गोप सुतानु योगे यही हंस करके उत्तर दे रहे सोच कर, मैं उस समय क्या कहूंगा। और चौथा कारण है ना, चौथा कारण बता रहे, सदा महानंद रस प्रदस्य यह ममापि पाटिर रसार्थ नोदिता अहो विचित्रा समयानुसारिता इत्याधोक्ष जो विस्मय तो जहास। भगवान ने सोचा कि मैं महा आनंद रसप्रद हूं, सबको परम सुख देता हूं, लेकिन हमारा भी समय ऐसा आ गया कि मुझे चंदन रस की जरूरत है, सबको परम रस देने वाला आज मुझमें भी पाटीर रस चंदन रस को मांगने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो अहो विचित्रा समयानुसारिता, जो सबको देने वाला है परम सुख परम ऐश्वर्य सब कुछ, आज उसको मांगना पड़ गया, इस समयानुसारिता इसको कहते हैं, समय समय का फेर है। भगवान ये सोच करके हंस रहे हैं कि केवल देता ही है सब कुछ, आज उसको मांगना पड़ रहा है, और भी चंदन का लेप मांगना है, चंदन रस। भगवान को हंसी अपने पर ही आ रही है कि सबको मैं सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन आज मांगना पड़ा, ये समय की बात है, समयानुसारिता, समय के अनुसार सब करना पड़ता है। भगवान काल के अधीन नहीं है, समय के अधीन नहीं है, लेकिन यह भक्त की उत्प्रेक्षा है कि भगवान इस तरह से सोच करके हंस रहे हैं। हरीश्वर जी एक और श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। या स्त्री सहास परिहास मति प्रकामम श्रुत्वा वचोन कुपिता हृदय यदि स्यात् वश्या भवत अक्षिरमध्वनिषेत कृष्ण तम निर्णयाय किं ताम वदत तथैव। हंसी करने पर भी, मजाक करने पर भी जो स्त्री हृदय में कुपित नहीं होती है वो अवश्य बस में हो जाती है। क्या इसका निर्णय करने के लिए भगवान हंसे कि ये मेरे बस में होगी कि नहीं? तब निर्णय आया, इसका निर्णय करने के लिए हंस रहे हैं, इसको बस में करना है ना, इस बस में करना है कि इससे चंदन लेना है। अगर चंदन मांगूंगा कह देगी कि नहीं भागो कहां से आए हो, नहीं दूंगी तो। तो इसका निर्णय करने के लिए कि यह मुझसे प्रेम करेगी कि नहीं। अरे लक्ष्मी जिसके चरण की सेवा में रहती है, कौन स्त्री आपसे प्रेम नहीं करेगी? तो लेकिन फिर भी भगवान इस तरह से मानो हंस रहे हैं। ये तो हास्य पर हरेश्वरी जी कहें, ऐसे बहुत कथा में देर हो जाएगी। तो श्री भगवान हंस करके पूछ रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी प्रसाद जी लिखते हैं, सहज मुख प्रसक्ति है, श्री कृष्ण का स्वभाव ही है आनंद घन है, हंसते ही रहते हैं। तो वे हंसते हुए पूछे, का तुम बरोर्वे तदुहानुलेपन कश्यांगले वा कथयस्व साधुनः देह्या वलेरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते नचिदा भविष्यति। दो संबोधन कर रहे हैं भगवान, हे बरोरु, हे सुंदर जांघो वाली, इसका अर्थ होता है सुंदर। संबोधन ऐसा कर रहे हैं कि भगवान का राग उसके प्रति प्रकट हो रहा है। हे बरोरु और हे अंगने, जिसका अंग अत्यंत सुष्ठ हो, सुंदर हो, उसको अंगना कहते हैं। हे अंगन, हे बरोरु, तुम का से तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? सबके बीच में भगवान पूछ रहे हैं। श्री बलराम जी बगल में ही खड़े हैं, बगल में थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा अवसर देते हैं कि ठीक है बात करें। तुम का, तुम कौन हो? तुम्हारा आईडी क्या है? कहां की हो? और का थे किस जाति की हो? का में सब कुछ शामिल है, तुम का, तुम कौन हो? हंस करके बात कर रहे हैं, तुम का। तो किसकी हो, किसकी पुत्री हो, या किसकी हो, या कस्य वा एतद अनुलेपनम, यह जो अंगराग ले जा रही हो ये किसके लिए ले जा रही हो, किसके लिए ले जा रही हो? उह अपिच भ्रू विक्षेप से पूछ रहे हैं, श्री बलराम जी के सामने बात कर रहे हैं। तो श्री बलराम जी की तरफ भी देखकर, सखाओं की तरफ देख करके और भौं से इशारा करके मटकी मार करके उनको, और कहते हैं किसके लिए ले जा रही हो? उससे भी बात करना है, श्री बलराम जी पर भी देखना है, लेकिन भगवान सर्व कला आगर हैं, सपने समाप्त हैं। सखाओं को लग रहा है कि यह परिहास कर रहा है और कुब्जा को ऐसा लगे कि ये लड़का मुझ में पूर्ण आसक्त है, मुझे परम सुंदरी कह रहा है, ऐसा उसको भाव होना चाहिए। और सखाओं को भाव हो रहा है एक ही व्यवहार से, इनको हो रहा है कि ये हा हा हंस रहे हैं कि अद्भुत मनोरंजन हो रहा है हंस रहे। ये जानते थे क्या कृष्ण कभी इसको पसंद करेंगे, राम राम ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन वो तो हास्यारणों में डूबे हुए, हास्य हास्य हो रहा है, खूब आनंद में है, हंसी में है। इसलिए भ्रू विक्षेप करके ऊ हा जो लगा, इसका अर्थ अपीचा इसको ठीक से बताओ। न अस्माकम अस्मभ्यम साधु कथयस्व, आप ठीक ठीक बताइए आप कौन हैं और ये अंगराग किसके लिए ले जा रहे हो। बहुत मर्म है भगवान के वाक्य में, किसके लिए एतद अनुलेपनम, यह अनुलेप यह अंगराग किसके लिए ले जा रही हूं। और ऊपर से कह दिए कथयस्व साधना, हमसे साधु कल, साधु मैंने बिल्कुल सच्चा सच्चा और कंप्लीट वर्णन कीजिए, छिपाइए मत, आप छिपाओ मत और पूरा पूरा कहो। साधु का अर्थ है कंप्लीट कहो, कुछ छिपाओ नहीं, और सत्य कहो। इस तरह से पहले सांच बोलिए, झूठ मत बोलिए, आप किसके लिए ले जा रहे हैं, ये भी बोलने की कला है। वो थोड़े झूठ बोलने वाली थी लेकिन भगवान कह रहे साधु बोले, ठीक से बोले। न हम सब के प्रति, अब भगवान कैसे कहें कि मैं सुनना चाहता हूं, और हिथा है ना लज्जा होगी समाज में, तो हम लोगों से आप सही सही कहिए कौन है, आप कौन है, ये अंगराज किसके लिए ले जा रहे हैं। और उत्तमम अंग विलेपनम, ये आपका अंगराग पेस्ट बड़ा उत्तम है, बहुत सुंदर है, उसकी फैली हुई गंध को मानो भगवान अपने श्री नासिका से सूंघ रहे हों, बर्तन पर नहीं सूंघ रहे थे लेकिन कहा कि बड़ा इसका इसकी सुगंध फैल रही है और रंग भी बहुत अच्छा है। तो उत्तम अंगराग क्या आप हम दोनों को दे सकती हो, दोनों को आवयो हमको और हमारे बड़े भाई को अब दे सकते हो। यदि तुम हम दोनों को अंगराग दे दोगी तो तव न चिरा श्रेय भविष्यति, अविलंब ही बिना देरी के तुम्हारा परम कल्याण होगा, परम श्रेय भविष्यति, तुम श्रेय होगा। भगवान के कहने का आंतरिक अर्थ था कि अभी अभी सारा कुब्जा दूर कर दूंगा, अंग जो टेढ़ा टाढ़ा है बिल्कुल सीधा परम ज्योति बना दूंगा, अगर तुम मुझे अंगराग दोगे, हम दोनों को अंगराग दोगी तो। वैसे कुब्जा ने भगवान को अंगराग दिया इसके लिए नहीं कि वे इसको सीधा कर देंगे, कुब्ज दूर कर देंगे। आगे सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि रूप पेशल मार धुर्ज धर्षितात्मा, भगवान के सुंदरता से, शारीरिक सौंदर्य से, सुकुमारता से, कई प्रकार के उनके विशेषता से धर्षितात्मा, उसकी आत्मा उसका मन पूर्ण वश में हो गया, उसने भगवान को अंगराग दे दिया। तो जब श्री भगवान ने इस तरह से पूछा तो सैरंद्री कहती है, वाक्य का अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। सैरंद्री वाच, दासी अस्मि अहम, मैं दासी हूं, दासस्य महम सुंदर कंस सम्मता। जब भगवान ने बरोरु संबोधन किया कि हे परम सुंदरी, ये अंगराग किसके लिए ले जा रही हो और तुम कौन हो, तो जब भगवान ने सुंदरी कहा तो कुब्जा ने भी उत्तर दिया, हे सुंदर। बस यह आसक्ति तो सुंदर और सुंदरी में चालू हो जाता है, तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़ी सुंदरी हो, बस चालू यही भगवान में कुब्जा में चालू हो रहा है। लेकिन भगवान तो परम अप्राकृत धरातल पर है, तो यही विधि है, तो विधि नहीं मतलब यही होता है। क्या कहा जाए, भगवान ने कहा कि हे सुंदरी तुम कौन हो, ये अंगराग किसके लिए ले जा रही हो, कौन हो का उत्तर देती है कुब्जा, हे सुंदर मैं दासी हूं। संबंध नहीं बताया किसकी दासी, ये ध्यान देने की बात। संबंधवाचक शब्द कुछ नहीं बता रहे किसकी दासी हूं, दासी अस्मि मैं दासी हूं। श्रीपद वल्लभाचार्य लिखते हैं कि मैं जन्म से ही जाति से ही दासी हूं, और आप कृपा करेंगे तो आपकी दासी हो जाए। दासी मैं हूं, किसकी दासी नहीं बताई, आप कृपा करेंगे तो आपकी दासी हो जाऊंगी। दासी अस्मि ऐसे संबंध नहीं बता रहे, लेकिन इस वाक्य का अर्थ यही होगा कि आपकी दासी। कोई पूछ रहा है तुम कौन हो, अगर कोई पूछे किसी से आप कौन हैं, मैं दास हूं, तो इसका अर्थ है कि उनका दास जो पूछ रहा है उसी का दास। यह एक वाक्य की शैली है। जब भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो श्री कुब्जा के मुख से निकल रहा है दासी अस्मि मैं दासी हूं, सहज समझ लेना चाहिए आपकी दासी, मैं आपकी दासी। अनुलोप कर्मणि कंस सम्मता, मैं अनुलेप कर्म करती हूं, अंगराग पीसती हूं, तैयार करती हूं, ये सरकार के द्वारा अपॉइंटेड हूं, सरकारी काम है, मतलब राजा कंस के द्वारा सम्मत हूं। राजा कंस की सम्मति है इसमें, ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि मैं कंस की दासी हूं, ये नहीं कह रही है। मैं दासी हूं और अनुलेप कर्मणि, चंदन पिसने में, अंगराग तैयार करने में कंस की सम्मता है, कंस मानता है मुझको। तुम कौन हो मैं सबसे पहले तो भाई ये भी बताना होगा कि नाम क्या है, क्या नाम है आपका। कितना दैन्य भाव से कुब्जा बोल रही है, त्रिवक्र नामा, हे सुंदर मेरा नाम है त्रिवक्रा, मैं तीन जगह से टेढ़ी हूं, इसीलिए लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, यही नाम है। और नहीं बता रही है कि मैं किसकी बेटी हूं, कहां से आई हूं, कहां घर है, ये मेरा नाम त्रिवक्रा है। रिकॉर्ड बताए कि मद भावितम भुजपते रति प्रियम, मेरा साधित बनाया हुआ तैयार किया हुआ अंगराग भुजपति कंस को अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो राजा ही परम प्रमाण होता है, यदि राजा जिस चीज को पसंद कर रहा है तो सारे देश की जनता उसी को चाहेगी। मेरा तैयार किया हुआ अंगराग भोजपति को बहुत पसंद है। अगर भोजपति से लेकर के ये अर्थ किया जाए कि मैं भोजपति की दासी हूं, यह भी ठीक है। कुब्जा यह कह रही है कि कि मैं भोजपति की दासी हूं। इसका अर्थ है कि वंश परंपरा से मैं दासी हूं, कोई हृदय से दासी नहीं हूं। यही मेरी जीविका है, अंगराग पीसना और करना। वो भी जब सरकारी सर्विस मिल गई है, राजा के द्वारा अपॉइंटेड हूं, अंगराग पीसती हूं, बहुत पसंद करता है। तो इस कारण से और लोगों को भी बहुत पसंद है, राजकीय परिवार के लोग मेरा अंगराग लेते हैं। वैसे लोग दान नहीं देते थे, सरकारी नौकर थी तो तैयार करते थे, उसको भले मासिक वेतन मिलता था या फ्री घर दिया होगा कौन से रहने के लिए। तो कह रहे कि मेरे द्वारा साधित अंगराग भोजपति कंस को बहुत प्रिय है, किसके लिए ले जा रही हो इसको, तो उसको बता रही है। ये नहीं कह रहे कंस के लिए ले जा रही है, मेरे द्वारा पीसा हुआ अंगराग राजा कंस को, भोजपति को बहुत पसंद है, ये किसके लिए ले जा रहे हो। भगवान का तो ये प्रश्न था, आखिर ले किसके लिए जा रही है। कितना त्याग है, कितना प्रेम है, कुब्जा ने कहती है, आप दोनों को छोड़ करके इसका कौन अधिकारी हो सकता है, मैं आप दोनों को दूंगी, अपने आप कहती है। भगवान ने कहा कि हम दोनों को अंगराग दे सकती हो, तो कहती आप दोनों के अलावा इस अंगराग का अधिकारी कौन है, कोई योग्य नहीं है, आप दोनों योग्य हैं। इस प्रकार की बात कहना, अभी अभी कंस को पता चलेगा इसने कृष्ण बलराम को अंगराग दे दिया तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसको कहते हैं प्रेम। कृष्ण के साथ प्रेम में इसका अनुसंधान ही नहीं रहा कि कंस क्या करेगा, इतना स्मरण नहीं रहा, कुछ भी नहीं। भगवान के प्रेम में उनके सौंदर्य से इतना आकृष्ट थे, उनकी रसिकता से, सुकुमारता से और मधुर वचन से साफ कर दिया ये किसी के योग्य नहीं। अब तक मैं पीस रही थी अंगराग कंस के लिए ले जा रही थी, लेकिन आज से नहीं, बिना युवाम आप दोनों के बिना इसका कौन अधिकारी है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, आप दोनों इसके अधिकारी। तो श्री बलराम जी का नाम ले रही है इसलिए कि अपने कृष्ण प्रेम को सामान्य व्यक्त करने के लिए, ऐसा कोई न लगे कि ये कृष्ण में आसक्त हो गई। तो वास्तव में कुब्जा कृष्ण में आसक्त थी, बलराम जी में नहीं, लेकिन अब वहां पर सामान्य व्यवहार की बात है तो दोनों का नाम ले रहे हैं। आप दोनों के बिना इस अंगराग का दूसरा कोई पात्र नहीं है, कोई योग्य नहीं। कौन को कह अन्य तम तब अर्हति, कौन दूसरा हो सकता है, किस कंस किस गली का कुत्ता है, इसका अधिकारी कंस नहीं है। कंस की राजधानी में और वह अभी जनता के बीच राजपथ पर कुब्जा इस तरह से बोल रहे हैं। कभी कभी लोग विचार नहीं करते हैं कि क्या संबंध है कुब्जा का भगवान के साथ, इस तरह से सरे बाजार में बोल देना इस सामान्य बात नहीं है, कल्पना से अतीत बात है, आपके अलावा इसका कोई पात्र नहीं है। और सुंदर संबोधन कर रहे है सुंदर, तो इसका अर्थ है कि उसमें भाव उत्पन्न हो चुका है भगवान के प्रति, परम भाव से आकृष्ट होकर के तब तो सुंदर कह रही है। अहम अनुलेप कर्मणि कंस सम्मता चतुः सम निर्माण में चंदन अगुरु और कुंकुम और कस्तूरी, ये चार को सम का अर्थ है एक निश्चित मात्रा होती है, इसको मिला करके और पीसा जाता है, इसको चतुः सम अंगराग कहते हैं। इस कर्म में कंस मुझे बहुत पसंद करता है। त्रिवक्र नामा त्रिशह ग्रीवा उरु कट्या वक्रा इति त्रिवक्र नामा, तीन जगह से टेढ़ी हूं इसलिए त्रिवक्रा कहते। दासी अस्मि, मैं दासी हूं, का का उत्तर दे रहे, मैं दासी हूं। वास्तव में यही अर्थ ठीक है कि मैं दासी हूं, जो पूछ रहा है उसकी दासी हूं, यही अर्थ है दासी असली। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इसमें कोई विषय संबंधी शब्द नहीं है किसकी दासी। और श्रील जी गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद दोनों कहते हैं तो कोई संबंध नहीं बता रहे किसकी दासी, तो इसका अर्थ है सीधा आपकी दासी। इस तरह से प्रथम भेंट में ही और बाजार में इतना समर्पण कर देना बहुत बड़ी बात, आपकी दासी है। मद भावितम मया भावितम साधितम अनुलेपनम भोजपते अति प्रियम, उसको बहुत प्रिय है। तो जब उसको प्रिय, राजा को प्रिय है, और यह भी करे कि आप दोनों के अलावा राजा फजा कोई इसका अधिकारी नहीं, तो राजा कौन सबको बहुत प्रिय है लेकिन यह इसके योग्य नहीं है, इसके योग्य आप दोनों हैं, आपकी सेवा के लिए है, आपको दूंगी। कुब्जा एक प्रकार से अभी कह रहे हैं कि ओहो आपको मांगना पड़ा इसके लिए मुझे खेद है, ये तो आपका ही है, आपके लिए अब तक तैयार की मैं दूंगी। दो वचन बोल रही है अपने भाव का गोपन के लिए, लज्जा आ रही है। श्री बलराम जी के सामने अगर कहती कि आपके लिए तैयार की हूं तो ठीक नहीं होता। कहां जा रहा है? तो ये भगवान से कुब्जा से बात हो रही है, ये सब वैष्णवों के द्वारा स्वादन की चीज है। आप दोनों के अलावा इसका कोई अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, तो आप दोनों कह करके अपने भाव को छिपा रही है, कृष्ण के प्रति जो भाव है इसको अवहित्था कहते हैं संस्कृत में। दासी स्वभाव तो जात्या वा, मैं जाति से दासी हूं, तुम चेत कृपा करिष्यसि, यदि आप कृपा करेंगे तब एव भविष्यामि इति भाव, मैं आपकी दासी हूं। अच्छा, अथवा इसका अर्थ है दासी हूं, जन्म से ही स्वभाव से ही दासी हूं, अपने भाव को छिपा करके बोल रहे हैं, यदि आप कृपा करेंगे तो आपकी दासी। और दास तो किसी की सेवा ही करेगा ना, दास तो आप कृपा करेंगे तो आपकी दासी है। इस तरह से रूपते सलमाधुर जय हसिता लाप दीक्षित ही धर्षितात्मा ददौ सांद्रम उभयोरनुलेपनम। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से और पेशव सुकुमारता से माधुर्य रसिकता से और हसी पर हंसी से और आलाप बोली से और वीक्षित चितवन से धर्षित आत्मा, इसकी आत्मा मन या हृदय पूर्ण रूप से नौछार हो गया था, कृष्ण के वश में हो गया था और उसने दे दिया अंगराग, सबके सामने निकाल निकाल करके अंगराग दिया, अंगराग दिया और लगाया। भी आगे का श्लोक बता रहे, धर्षित आत्मा का अर्थ है मोहित चित्ता, ततस्तावंगरागेण स्वबर्ण पर शोभिना संप्राप्त पर भागेण सुशुभा तेन रंजित। तो कुब्जा ने अंगराग दिया थे, परस्पर दोनों भाई लगाए। एक आचार्य टीका करते हैं कि श्री कृष्ण श्री बलराम जी को लगाए, श्री बलराम जी कृष्ण को लगा रहे, अथवा स्वयं कुब्जा ने ही दोनों को लगाया। संप्राप्त पर भाग, पर भाग मतलब कमर से ऊपर, कमर से ऊपर चंदन लगाया गया, पर भागे ना, पर भाग ऊपर का भाग, नाभि से प्रारंभ करके और चंदन पूरा लगा के चंदन यात्रा अक्षय तृतीया आ रहे हैं 8 तारीख को, 8 को है ना, उस दिन भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो कुब्जा ने लगाया, वो पहले मिलाई अपने ब्रश से, और ब्रश से मिलाकर, ब्रश से पेंट नहीं किया, मिला करके और अपने हाथ से, झुकी हुई थी लेकिन किसी तरह से, वो भी तो बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे लड़के थे, तो नाभि से ऊपर लगाए। तो श्री बलराम जी के लिए उसने सांवला तैयार किया, अंगराग, सांवला अंगराग, स्वभाव से ही सांवला था, अथवा सांवला रंग डाला होगा, जो भी किया। और कृष्ण के लिए पीला अंगराग, जब उसने लगाया चंदन पूरा अच्छा से प्रेम से लगा रहे थे, सब लोग तमाशा देख रहे थे, सारा मथुरा का जन समुदाय अवाक था कि क्या हो रहा है। और यही टाइम था, ये तो घने मोस्ट ट्रैफिक का टाइम होता है ना, ये सब लोग देख रहे थे भगवान की इस लीला को, सारा जन समुदाय देख, किसी की कोई दोष दृष्टि नहीं होती, क्या दोष दृष्टि करेगा, अंगराग पिसने वाली लगा रही है, उसको कोई ध्यान नहीं है, कौन सी मरे जाए या उसको कोई खबर दे, इसका कोई ध्यान ही नहीं था। अभी कोई उठा करके मोबाइल और कंस को कहता, सरकार आपका अंगराग आपकी दासी दे दी दूसरे को, ग्वालों को दे दी, लेकिन कोई ध्यान नहीं है, ना प्रेम है, अंगों का स्पर्श कर रही है, श्री अंगों का लगा रही है, पूरा अच्छा से लगाए। तो उससे, उस अंगराग से स्ववर्णेतर शोभिना, अपने वर्ण से इतर शोभिना अंगराग था, बलराम जी के लिए सांवला अंगराग था और श्री कृष्ण के लिए पीत वर्ण का अंगराग था, स्ववर्ण इतर शोभिना, अपने वर्ण से भिन्न शोभा थी उसकी। श्री कृष्ण सांवले हैं तो पीत वर्ण का उनका अंगराग हुआ, और श्री बलराम जी का सांवला तो गोरे हैं, तो स्ववर्णेतर शोभिना, तो वे बिल्कुल उल्टा लगने लगे, श्री बलराम जी कृष्ण जैसे लगने लगे और कृष्ण श्री बलराम जी जैसे। ये अंगराग की विशेषता है। और दोनों बहुत पसंद की, बहुत खुश थे, जैसे भगवान का श्री विग्रह मंदिर में अब चल खड़ा रहता है, कोई लगाता है, इस तरह से श्री कृष्ण खड़े थे, जितना अच्छा से लगाओ, श्रीमुख से लेकर के और नाभि पर्यंत, श्रीहस्त में, सब जगह लगाया गया। भगवान को बहुत सुख मिल रहा था उससे, शरीर शीतलता का अनुभव कर रहा था, ठंडा अनुभव कर रहा था, और चंदन लगाया ही जाता है वास्तव में साहित्य प्राप्त करने के लिए। श्री कृष्ण को अनुभव हो रहा है श्री बलराम जी को, हमको शीतलता मिल रही है, सुख दे रहा है, इस तरह से एक भक्त कुब्जा भगवान को अंगराग दे रहे हैं। गर्मी के दिन में भगवान को चंदन लगाना चाहिए, चंदन पिस पिस करके लगाना, यह एक श्रेष्ठ भक्ति है। तो उसने लगाया, क्यों दिया चंदन, रूप पेशल माधुर्य हसिता लाप विकसित, कितने रूप पेशल माधुर्य हसित आलाप और विकसित, 6 कारण थे, छह कारण से वो इतना अभिभूत थी कि अब उसकी मति गति सब नष्ट हो गई, नष्ट मतलब लुप्त हो गई, ये विचार नहीं कि मैं सरकारी अफसर हूं, अधिकारी हूं, कर्मचारी हूं, कंस इसका बड़ा कठिन दंड देगा, कंस के लिए ले जा रहे थे और बीच में दे दी कृष्ण को, भगवान जी को। तो धर्षितात्मा कहकर सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि भगवान के सौंदर्य से, सुकुमारता से, रसिकता से, हंसी से, आलाप से और दृष्टि से कृष्ण ऐसे देख रहे थे कि उसका तो दिमाग और अपने होश मन रहा ही नहीं, मैं कहां खड़ी हूं, क्या कर रही हूं, इसका ध्यान नहीं रहा, बस कृष्ण का हंसना, कृष्ण का देखना, कृष्ण की रसिकता, कृष्ण का कितना सुंदर शरीर, यही केवल स्मरण रहा, कंस फंस का कोई स्मरण नहीं था। जो होगा देखा जाएगा, जो ऐसा कहते हैं वो तुमको तो स्मरण है न कम से कम कि आगे क्या होगा देखा जाएगा, डर तो रहता है लेकिन स्मरण होता है, कुब्जा को कोई स्मरण ही नहीं हुआ कंस है या मर गया है क्या है, कुछ नहीं है, कुछ स्मरण नहीं, क्योंकि स्मरण क्या है, रूप पेशल माधुर्य हसित आलाप विकसित है, छह चीज का स्मरण, कृष्ण की मुस्कान, कृष्ण की चितवन और कृष्ण की मधुर बात। जब उन्होंने कहा कि हे सुंदरी ये किसके लिए अंगराग ले जा रही हो, उससे जो बोले अथवा अपने सखाओं से बात कर रहे हैं बीच बीच में, तो उसी वाणी में उसका चित्त आकृष्ट था। अब जब रूप पेशल माधुर्य हसिता लाभ विकसित है, इन छह से बाहर दिमाग जाए तब न कंस को और मथुरा को क्या क्या सोचे, कुछ ये स्मरण है। धर्षित आत्मा, धर्षित का अर्थ होता है पूरा पकड़ लेना, ग्रस्त कर लेना, जैसे किसी को कोई भूत ग्रस्त कर लेता है उसको धर्षित कहते हैं, होश में नहीं रह जाता है। तो कुब्जा भगवान के अप्रतिम सौंदर्य से, रसिकता से, वाणी से, दृष्टिपात से पूर्ण मोहित थी, पूर्ण मोहित, कभी स्मरण नहीं हुआ कंस आदि का, और उसने इस तरह अंगराग लगाया कृष्ण, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अरे गोपी जनों की महिमा को क्या कोई समझेगा, पहले कुब्जा की तो समझे। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी साधारणी रति कहते, साधारणी रति कुब्जा के, और पूर्वासी भगवान की पत्नियों का जो भाव है उसको समंजसा रति कहे, और गोपी जनों के भाव को समर्था रति, रति मतलब प्रेम, श्री कृष्ण में आकर्षण। तो कुब्जा भी भगवान की प्रिया है, उसका यह भाव है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है क्या ऐसे भी किया जा सकता है, क्या भूल जाए अपनी, अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपने सब याद ही नहीं आवे कि मैं नौकर हूं, मेरी ये ड्यूटी है। इतना कौन अविष्ट होता है, किसको ये बात भूलती है, कहीं नहीं देखा जाता है, वो भी छिप करके नहीं बात की कि अब छिप करके नहीं, किसी कमरे में चलिए मैं लगा दूंगी, कोई जाकर खबर देगा कंस को, स्मरण ही नहीं था। तो इस तरह कृष्ण के रूप, रसिकता, सुकुमारता, सुंदर मुस्कान, सुंदर चितवन और परम माधुरी वाणी, इसी में धर्षिता आत्मा, इसी में आसक्त। और वह कोई ध्यान करके, कोई साधना करके इस तरह से अभिनिवेश प्राप्त नहीं की थी। कृष्ण के स्वरूप का, सौंदर्य का ऐसा प्रभाव है जो देखे वो मोहित हो ही जाएगा, अद्भुत सुंदरता है कृष्ण, इस तरह उसने दिया। तो कृष्ण बलराम स्वर्णितर शोभिना, शोभित होने लगे। भगवान ने जब देखा कि मुझे कुब्जा ने यह उपहार दिया, अंगराग लगाया, इतने प्रभु कृतज्ञ हुए कि तत्काल उसको परम सुंदरी बनाने का उपाय करने लगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रसन्नो भगवान कुब्जा, भगवान सर्वसमर्थ, सब कुछ देने में जो समर्थ हैं, सब कुछ करने में वे प्रभु भगवान कुब्जा पर प्रसन्न हो गए। सर्व पुरुषार्थ दे सकते हैं, वैकुंठ दे सकते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं भगवान। करने जो कर सकते हैं, नहीं करने जो कर सकते हैं उसको उल्टा कर सकते हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं। तो भगवान कुब्जा पर प्रसन्न हो, जो सर्वज्ञ हैं प्रभु, उसके चित्त की स्थिति को देख लिए कि इसे संसार का बिल्कुल स्मरण नहीं है मेरे अलावा, तो वे प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से। भगवान ने विचार किया कुब्जा, इस बेचारी के पृष्ठ पर कुब्ज है, देख रहे हैं सामने त्रिवक्रा, तीन जगह से टेढ़ी है और मुख पर भी देख एक रुचि राणा, मुख बहुत सुंदर है। तो उसको रिज्विंग कर तुम, रिज्विंग मतलब सीधा करने के लिए, बिल्कुल सम करने के लिए, जैसा स्त्री का स्वरूप होना चाहिए, जैसे उसके ग्रीवा, जैसा मस्तक स्तन हाथ सब कुछ जैसा होना चाहिए, ऐसा करने की सोच लिए। क्या कोई मनुष्य, कोई डॉक्टर कभी किसी को सोच सकता है बिना कुछ औजार लिए कुछ किए? औजार से तो कुछ नहीं होता है, वो तो काट कूट करके अलग कर देगा शरीर को, ये कुब्ज को दूर नहीं कर पाते। जो जन्म से कुब्ज मिला हुआ है उसको दूर नहीं किया जा सकता है, उसको दूर करने में आदमी मर जाएगा। लेकिन भगवान प्रारब्ध का भी हनन करते हैं, ये दिखाया जा रहा है भगवान है, ये अपना कर्म है, जन्म से कुब्ज मिला हुआ है इसको, लेकिन ये तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तैयार हो गए, मन में कर मनस चक्र संकल्प कर लिए, इसको अभी अभी परम सुंदरी करना है। दर्शन दर्शने फलम, और केवल अंगराग अर्पण का ही फल नहीं देंगे, दर्शन का फल देंगे। दर्शन दर्शने फलम, भगवान भेंट में कुब्जा को देना चाहते हैं। श्रीपद वल्लभाचार्य कहते हैं कि वो थोड़ा सा मान लीजिए 10-20 रुपए का उसने अंगराग दिया, तो इसका इतना फल देंगे, तो सुंदर शरीर बना देना लक्ष्मी जी के समान। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अंगराग अर्पण का फल नहीं दे रहे हैं, दर्शन का फल दे रहे, दर्शन दर्शन फल दिखा रहे हैं कि मेरे दर्शन का, मुझे भेंट करने का क्या फल होता है। तो दर्शन दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? वहां जुटी हुई जनता को दिखाना चाहते हैं, अथवा तस्या दर्शन कुब्जा को दिखा रहे हैं। मैं एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति हूं कि अगर मुझसे कोई भेंट करता है, मुझको कोई देता है, तो मैं क्या देता हूं ये देखे सारी दुनिया, इसीलिए समाज के बीच में कुब्जा का सुंदर रूप विधान कर रहे हैं। तो अद्भुत भगवान ने काम किया। श्री बलराम जी वहां खड़े हैं, सखा लोग खड़े हैं, सारी जनता देख रही है, और श्री भगवान पहले अपने दोनों पैरों से उसके दोनों पैर को दबाए, पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, प्रपदे कुब्जा के प्रपद मतलब पैर के अगले भाग को, दोनों भाग को अंगुली के ऊपर लगभग अपने दोनों पैर से आक्रमण किए, आक्रमण का दबाए, अपना दोनों पैर रखे और बाएं हाथ को पीठ से लगाए और दाहिने हाथ के दो अंगुली से उसके चिबुक को पकड़कर ऐसे टाने, और बस टानते ही मुकुंद स्पर्शना, मुकुंद के स्पर्श करते ही बभुव प्रमदोत्तमा, वो श्री जी के समान परम सुंदरी स्त्री हो गई। तो कुबर कहां गया कोई पता नहीं, इसी और कोई दर्द नहीं हुआ, टेढ़ा करने में दर्द नहीं हुआ, इसीलिए तो मुकुंद स्पर्शनाथ शब्द बभुआ प्रमदोत्तमा, श्री कृष्ण ने छुआ और बस हो गई। पर फिर भी भगवान ऐसे दिखा रहे हैं कि ये थेरेपी कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं। तो पदभ्याम आक्रम्य प्रपद है, अपने दोनों चरण कमल से उसके प्रपद को दबाए, और ऐसे उठाने पर उठ सकती थी, इसलिए पहले दबाए प्रपद पर दोनों चरण कमल रख रहे हैं। भगवान के चरण कमल का ध्यान कीजिए जो कुब्जा के पैर के ऊपर है दबाए। परम सुंदर सुकुमार चरण कमल कुब्जा के पैर पर है और उसको उठाना, उसके अध्यात्म को उठाना है। अध्यात्म मतलब आत्मा जिस शरीर में रहता है, यहाँ अध्यात्म का अर्थ लिखा हुआ है, पढ़ रहा हूं। आत्मानं जीवम अधिकृत्य वर्तमान अध्यात्मं देहम इति जीव त्याग पर्यंतम देहस्य प्रारब्ध वसेन अपरिहार्यं तत्कुब्जत्वम इति सूचितम्। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो जीव को वश में करके शरीर रहता है, जीवम अधिकृत्य वर्तमानम, इसका अर्थ है कि जब तक देह रहेगा, जब तक जीवात्मा इस देह में रहेगा तब तक उसको बदला नहीं जा सकता है ना। मान लीजिए अगर शरीर काला है और आत्मा उसमें है तो मरते दम तक शरीर को गोरा नहीं किया जा सकता, इसको प्रारब्ध कहते हैं। अध्यात्म कहकर सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि भगवान ने प्रारब्ध का क्षय कर दिया, जो मरण पर्यंत कुब्ज था, रहने वाला था, भगवान के छूते ही बिल्कुल ठीक हो गए। यह है श्रीकृष्ण का सहज प्रभाव। श्रीकृष्ण परम ईश्वर हैं, समर्थ हैं, कि कोई मनुष्य बालक मात्र नहीं है। कुब्जत्व दूर करने के लिए कहा गया तो दोनों पैर से कुब्जा के दोनों पैर को दबाए, बाम श्रीहस्त को लगाया पीठ से और दो अंगुली को तर्जनी और मध्यमा को से लगाए। इस अंगुली का कोई नाम नहीं है इसलिए इसको अनामिका कहते हैं। ऐसे परम पवित्र अंगुली है तो कोई नाम नहीं होने से इसको अनामिका कहते हैं। इसका नाम है कनिष्ठा और इसका नाम है मध्यमा, ये मामा वाली अंगुली। इसका नाम है तर्जनी, डांटने वाली अंगुली है, निर्देशिनी, और इसका नाम है अंगुष्ठ। तो केवल पांच अंगुलियों में एक का नाम नहीं, इसका भी नाम है अनामिका, जिसका नाम नहीं है अनामिका। तो ऐसे इन दोनों अंगुलियों को भगवान नहीं सटाए कुब्जा के चिबुक पर। चिबुक इस भाग को कहते हैं, मुख के नीचे चिबुक, और दोनों अंगुली को लगाए बाएं हाथ को पीठ पर और इस तरह से उत अनिनमत ऊपर खींचे, उठाए। सब लोग देख रहे हैं ऊपर उठाए और उठाते ही कुबर सुबर सब खत्म हो गया और बभू और प्रमदोत्तम, प्रमदा उत्तमा, प्रमदाओं में श्रेष्ठ, मतलब स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री हो गई। ये भगवान का सहज प्रभाव है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इससे कृष्ण का ज्ञान होता है। ऐसे क्या संभव है, कोई है डॉक्टर या 10-20 लाख डॉक्टर मिलकर किसी एक को ऐसा कर सकते हैं? कोई शक्ति है किसी में बस देख दे, छू दे और हो जाए? कृष्ण की महिमा पर विचार करना चाहिए ना। यही जीव का कर्तव्य है मनुष्य का। इस जीवन में मनुष्य का और कोई कर्तव्य दूसरा नहीं है, श्री कृष्ण को समझना और उनसे प्रेम करना, यही कर्तव्य है। और तो सब पेट चलाने के लिए, जीने के लिए है, बाकी जी करके जो काम करना है वो यही है, श्रीमद् भागवतम सुनना और पढ़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भगवान ने किया। अब इस लीला पर श्रीपाद हरिश्री जी के उद्गार पढ़ लिया जाए। तो भगवान ने हंसा कुब्जा को देख करके, उस पर भी अभी कुछ है उपेक्षा। दृष्टा स्त्रियो अनुभूताश्च अप्यंग भोग मनोरमा अनंग भोग योग्य सब एका एव अक्षेति विस्मिता। अंग राग के योग्य तो बहुत स्त्रियां हैं ब्रज में या बाहर भी सब, लेकिन अनंग राग के योग्य तो यही है। अनंग का अर्थ होता है पूर्ण पूर्ण, और अनंग का अर्थ होता है काम। भगवान इस पर विस्मित थे, हंस रहे थे। भगवान ने सोचा कि अनर्घ्य ललना रत्न राशि रंजित चेत स नायम अर्ती जानतीम स्वप्रीतिम हासा ददर्श। भगवान ने जब कुब्जा को देखा, उन्होंने सोचा कि कुब्जा जब मुझे देखेगी और मेरा पता लगाएगी तो पता लगेगा कि ललनाओं में स्त्रियों में श्री मौ श्री राधा रानी और श्री ललिता आदि अनंत गोपियां इनसे प्रेम करती हैं, क्या ये मुझे पसंद करेंगे, कभी मुझे चाहेंगे। तो शायद कुब्जा ऐसा न सोचे तो अपनी प्रीति को प्रदर्शित करने के लिए भगवान हंस रहे थे, हंस रहे थे, नहीं देख करके मुख फेर ले, हंस रहे थे। इसे कुब्जा को एहसास मिले कि ये लड़का हमको पसंद कर रहा है। पहले तो सबके बीच में बात करना ही उसके लिए बहुत भारी सौभाग्य की बात है, कृष्ण जैसा पुरुष श्रेष्ठ उससे बात करे और भी हंस करके बात करे। तो भगवान ये दिखा रहे कि इसका इसके मन में कोई ऐसा न हो कि हमसे प्रेम नहीं करता है। भगवान अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए दिखाते हुए हंस रहे थे। कातुम बरोरी थी कातुम सुंदरी सुंदरो यमपिवा कश्यांग राग कृते। हे सुंदरी तुम कौन हो और यह सुंदर अंगराज किसके लिए ले जा रहे। तुम सुंदरी हो या अंगराज सुंदर है, इसी का उत्तर दिया कुब्जा ने कि हाँ ये सुंदर अंगराग है पर हे सुंदर ये आपके लिए है। किसके लिए ले जा रहे हो तो आपके लिए ले जा रहे हैं, आपके लिए है। प्रश्नोत्तर तुजत दाखिल विदा तक ज्ञानता अंगीकृता तेना स्पष्ट में भूदिति जब जद अबला विद्वान समाकर्षयत अज्ञानम समुदेति तस चैह सद अंगराग। हरीश्वरी जी एक और उपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान ने क्यों पूछा कि ये अंगराग किसके लिए ले जा रही है। जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में है, तो क्या भगवान को मालूम नहीं है कि ये अंगराग कंस के लिए ले जा रही है, क्यों पूछे। तो इस पर एक उपेक्षा करते हैं, बड़ी सुंदर उपेक्षा है। जो व्यक्ति किसी स्त्री के अंग राग में फंस जाता है, अंग राग राग में तो शोभा अंग राग, तो भगवान श्री कृष्ण स्त्री के द्वारा लिए हुए अंगराग में फंसे हैं, उनका चित्त फंसा अंगराग में, तो उसमें अज्ञान का उदय हो ही जाता है। जो व्यक्ति स्त्री को ध्यान से देखता है, उसके अंग को भोगना चाहता है, अगर अंगराग हुआ मतलब स्त्री के शरीर में आसक्ति हुई तो अज्ञान उत्पन्न हो ही जाता है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि हम स्त्री के अंगराग अंगराग मतलब लेपन में आसक्त हुए तो अज्ञानता, सर्ववेद वक्ता सर्वज्ञ भगवान में भी ये ज्ञान नहीं रहा कि ये किसके लिए ले जा रही है। जो भगवान इसको प्रकट कर रहे हैं, यदि कोई होश में रहना चाहता है विवेक में स्त्रियों के अंग पर कभी नहीं देखना चाहिए, मुख पर विशेष करके नहीं देखना चाहिए, नहीं तो अज्ञानी हो ही जाएगा। भगवान में कुछ नहीं अज्ञान आया, लेकिन इसको दिखा रहे हैं कि अब सर्वज्ञ भगवान पूछ रहे हैं कि किसके लिए ले जा रहे हैं। ये सब भी भाव भक्तों के हैं। अच्छा, भगवान ने ये क्यों कहा कि इस अंगराग को दोगी तो अचिरात तुम्हारा श्रेय होगा, मंगल होगा? तो इस पर हरिश्री जी कहते हैं, श्रेयस ते न चिराद भाविति न श्रद्धा वर्धते लोके सतफल श्रवणम बिना, श्रेयस ते न चिराद भाविति चे युक्त मधोक्षज। बिना फल का श्रवण किए कि इस कर्म का क्या फल है, कितना लाभ है, इसको सुने बिना उस कर्म में श्रद्धा नहीं होती। इसीलिए भगवान उस कर्म के फल को पहले बता रहे हैं, अगर ये करोगी, हमको अंगराग दोगी तो तुम्हारा परम मंगल होगा। ये तो स्वाभाविक बात है कि बिना फल सुने नहीं श्रद्धा होती है। कोई तो आदमी पूछता है, कहता है ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो, दूसरा पूछता है इससे फायदा क्या है, लाभ क्या है। शायद भगवान इसी लोक रीति का अनुसरण करते हुए कह दिए कि तुम्हारा श्रेय होगा, मंगल होगा अगर एक दोगी तो। ये अरबों रुपया खर्च करने पर कुंवर जाने वाला नहीं था, और हजारों वर्षों तक पड़े रही अस्पताल में कुछ नहीं होने में, ऐसे तो उसके पहले ही आदमी मर जाता है। हजार वर्ष अभी कहना बेकार, दो चार साल तक शरीर को काट कूट करके और कमजोर करके छोड़ देते हैं, कहना हाँ हो गए अब तो, अब अजर अमर ही हो गए। और सुना जाता है कि ऑपरेशन के बाद आदमी दो तीन महीने नहीं मर गए, तो ये कराने की क्या जरूरत। और पहले ये बताते भी नहीं है, लिख देते हैं अगर ये मर जाए तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, ये क्या परम श्रेय करेंगे। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं नुकसान होगा, दर्द तक नहीं होगा और पर श्रेय हो जाएगा। तो सफल श्रवण के बिना कर्म में रुचि नहीं होती है लोक में। शायद भगवान इसको दिखाने के लिए या कुब्जा को उत्साहित करने के लिए कहे कि इससे बड़ा मंगल होगा मुझको चंदन देने से। दासी अस्मि इति तो ध्वनित हो रहा है, हरिश्री जी कह रहे हैं इसमें यही ध्वनित हो रहा है, तो ये कह रही है कि मैं आपकी दासी हूं। इस पर लिखते हैं, जस्या दास महर निशुन विधि शिव स्वर्गाधिपाद्य सुरा कुर्वंत अद्भुत नैव प्राप्ति मनसो दैत्या स दैत्यार्जवन साती श्रीगलमार्जवन विदधति जस्यांघ्रिदासी दासी सती तस्यास्मिन् जगदीश ते त्रिभुवने कुब्जा न दासी कथम। अने जिस लक्ष्मी जी की सेवा ब्रह्मा शिव और स्वर्ग के राजा इंद्र आदि देवता करते हैं, इसलिए अद्भुत वैभव की प्राप्ति के लालसा से जिस लक्ष्मी जी की, यहां तक कि दैत्य तक लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं परम श्रद्धा से नियम से, सा अपि श्री वही श्री, वही श्री लक्ष्मी जी जिसके चरणों की दासी हैं, उसके चरणों की दासी एक कुब्जा क्यों नहीं होगी। अर्थात मैं आपकी दासी हूं, जब लक्ष्मी जी आपकी दासी हैं तो मैं आपकी दासी हूं। अद्भुत तरीके से हरिश्री जी इसको व्यक्त कर रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि किसके दास हैं? लक्ष्मी जी के। चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे तरफ थोड़ा देखे, कृपा कर करें, हमको कुछ मिले, श्री मिले, सौभाग्य मिले, धन मिले। लक्ष्मी जी बहुत कम कभी कभी किसी पर कृपा कटाक्ष करती, पर रात दिन नारायण की सेवा करती है। भगवान लेते रहते हैं शेष सज्जन, उस समय सेवा करती हैं, भगवान का घर बहारती हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, सब कुछ करती है, भगवान की सेवा में ही निरंतर लगी रहती है। जब श्री जी दासी हैं भगवान के चरणों की, तो कुब्जा न दासी कथम, कुब्जा क्यों नहीं आपकी दासी होगी, मैं स्वाभाविक आपकी दासी हूं। मेरा नाम है त्रिवक्रा, उसने ऐसा क्यों कहा? त्रिवक्रा तो लोगों ने नाम रख दिया, नहीं कोई नाम होगा ना उसका? ये कोई नाम है कि ये तीन टेढ़ी? ये कोई नाम है त्रिवक्रा? लेकिन कुब्जा क्यों भगवान से बात कह रही है कि मेरा नाम त्रिवक्रा है? इस पर हरीश्वरी जी लिखते हैं, गात्रम विधार्थ कृतने तदिति त्रिवक्रम नामापि ने तदनुसार भुवि प्रसिद्धम चित्तम तदक्रम यह चक्र धरेत्यरे ही प्रायं तरंग सरला सुदृशो भवन्ति। हे चक्रधर, हे सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, अथवा हाथ में चक्र का चिन्ह है उसको देखकर कह रहे, हे चक्रधर, मेरा शरीर विधाता के द्वारा ऐसा ही जन्म दिया हुआ है कि यह टेढ़ा है तीन जगह से, और इसी कारण से लोक में मेरा नाम भी हो गया है त्रिवक्रा। सब लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। त्रिवक्रा कहना मतलब एक उपेक्षा थी ना, बहुत बड़ी उपेक्षा है। किसी का शरीर मान लीजिए पैर में थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा चले आप उसको लंगड़ा कहिए तो कितनी गलत बात है ना। और वो भी त्रिलंगड़ी, मतलब तीन टेढ़ी, तीन जगह से टेढ़ी है, ये कोई नाम है? लेकिन कह रहे जो लोग मुझे इसी शरीर के आकार के अनुसार मेरा नाम रखे तदनुसार, तो किसी के शरीर में कहीं कटा हो तो उसका नाम रखा जाए कट शरीरा, कट देह है, ये कोई नाम? तुम दैन्य से बोल रहे हो खुब जाए कि मेरा नाम त्रिवक्रा है, लेकिन हे चक्रधर, मेरा चित्त टेढ़ा नहीं है, मेरा शरीर टेढ़ा है लेकिन चित्त बिल्कुल सरल है। और प्रायः सुंदरी स्त्रियां अंतरंग सरला होती, उनका हृदय बहुत सरल होता है, सरल होता है, छल कपट नहीं होता है, उसे कहने का आशय नाम है। शरीर टेढ़ा है इसलिए टेढ़ी कही जाती हूँ, त्रिवक्रा कही जाती हूँ, लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय बिल्कुल सरल है। तो भगवान ने पूछा था कि तुम कौन हो, तो इसी का उत्तर दे रही। तो फिर कुब्जा, अब कुब्जा जाति की जितनी स्त्रियां हो सकती हैं उसने आत्मसात करके बोल रही है, ये कुब्जा कुबरी भगवान राम को वनवास दे दी थी मंथरा, तो ये उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन जाति वही है। जाति का मतलब शरीर से, मैं कुब्जा हूं तो कुब्जा भी एक बार गलती कर दी थी, ऐसे कोई एक व्यक्ति करे तो उस तरह के सभी व्यक्तियों को लोग दोष देने लगते हैं ना, ये देखा गया है समाज में। एक कुब्जा ने गलती किया तो उसको खुद स्वयं कैकई कह रही है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ये विशेष पुनचेर कही भरत मात मुस्कान। जो झगड़ा लगाने वाली बात बोली कि कौशल्या राम को राज देने जा रहे, राजा दशरथ राज दे रहे हैं राम को, आपको बताए नहीं, एक महीना से तैयारी चल रही है, राजा रोज आपके बेड पर आते हैं, शाम को रहते हैं, लेकिन आपसे बताए नहीं, देखिए राजा का कपट। इसके पहले भी जब इसने सुना कि राम का राज्य तिलक हो रहा है तो कई कई प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, और कुब्जा को डांटी कि पुनियस बहुर कहसी घर फोरी पौधर जीभ कढ़ा वही छोरी, अरे घर में भेद करने वाली, अरे राम को राज दिया जा रहा है तो गलत क्या है, जेठ भाई है यही, यह रघुकल कुल दीप सुहाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये सूर्यवंश की सुंदर रीति है कि जेठ भाई राजा होता है और छोटे भाई उसके अधीन रहते हैं, तो रीति ही है। तो राजा दशरथ गलत क्या कर रहे हैं? अगर ऐसी बात कही फिर ना तो जीभ उखड़वा लूंगी, फिर बोल नहीं पाओगे, झगड़ा नहीं लगा पाओगे। ऐसे यह एक भाषा है, बेचारी जीभ नहीं उखाड़ने वाली थी लेकिन वो उखाड़ भी लेती तो रानी थी, कौन केस करता है, कौन सू करने वाला था? जो रानी थी, राजा उसके बस में थे, फिर बड़बड़ाने लगी, कई कई काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जा, ये जितने काने और लंगड़े खोरे कुबरे कुबर वाले होते हैं, कुटिल कुचाली जा, ऐसे ही बोलने लगी। ये कोई इसमें तथ्य नहीं है लेकिन बोलने ही लगी इस तरह। तो एक कुब्जा ने गलती किया तो ये भी मथुरा में भी जो जन्म ली है, इस कुब्जा के विषय में भी लोग सोच सकते हैं, अरे वही कुबरी है ना, वही कुबरी, इसने तो तूफान मचा दिया अयोध्या में। तो उसी के बारे में कुब्जा स्वयं बोल रही है, कौटिल्य अंतर्गतम न बही पुरासित अश्लिष्ट वर्षमणि बहिष्कृतमी वनांत इथम द्विजन्म कलिता चरणावगते नामय वक्र मितिशा कथेत किमीशम। हे प्रभो, उस कुब्जा में जो अयोध्या की थी उसके अंतर में कपट था, बाहर शरीर इतना खराब नहीं था, कुबरी थी लेकिन तीन जगह से टेढ़ी नहीं थी, कुब्ज था उसको। कौटिल्यम अंतर्गतम, हृदय में कौटिल्य था, कपट था, छल था, बाहर उसका शरीर टेढ़ा नहीं था, लेकिन अश्लिष्ट वर्षमणि, लेकिन मैं जो हूं कुब्जा इस जन्म में टेढ़ापन बहिष्कृत में व नाम पर, बाहर ही से टेढ़ी हूं, टेढ़ा शरीर है लेकिन अंत में कोई कपट नहीं है। इस तरह से दो जन्म की कथा को बताने के लिए कुब्जा कह रही है कि मेरा नाम भर केवल है त्रिवक्रा, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मान लीजिए किसी से पूछिए, खास करके टेढ़ा चलने वाले से, पैर लंगड़ा हो रहा है, तो कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो कभी व्यक्ति बताएगा कि हमको लोग लंगड़ा कहते हैं? कभी नहीं बताएगा, है ना? त्रिवक्रा से जब पूछा गया कुब्जा से कि तुम कौन हो, तो कहती है त्रिवक्रा मेरा नाम है, लोग कहते हैं। इसमें यह छिपा हुआ है कि मैं हूं नहीं तेरा, भीतर से मैं बिल्कुल सरल हूं, लेकिन लोग शरीर के अनुसार नाम रख दिए हैं। ये लोक तो अद्भुत है, कुछ भी नाम रख सकता है, और कोई कम सुन रहा है तो उसके लिए ए बहरा नाम रख ही देते हैं कई प्रकार से। तो अरे केवल मेरा नाम है त्रिवक्रा है, लेकिन मैं वक्र नहीं हूं। अच्छा, मैं दासी हूं, अगर इसको कोई जोड़े भागवत में अन्वय इसका करे कि अहम भोज पते है दासी, अन्वय हो सकता है, वैसे तो अति प्रियम के साथ ही उसका अन्वय ठीक लगेगा, लेकिन कदाचित अगर कोई जोड़े कि मैं भोजपति की दासी हूं तो उस पर हरिश्री जी कहते हैं, तद रिपोर्ट नहीं दास्यस्मि किंतु वंश क्रमागता ना तो अवमानित तुचे दासी भोजपते रहा। मैं आपके दुश्मन की दासी नहीं हूं, मैं कंस की दासी नहीं हूं। भोजपति से कहने का मतलब यह है, वंश में जो राजा होता है उसी की सेवा करनी पड़ती थी, वंश क्रमागता, वंश के नियम के अनुसार, कुल परंपरा से कुल गुरु होते हैं तो कुल दास दासी भी होते हैं, तो उस कारण से मैं सेवा करती हूं, कोई हृदय से कंस की दासी नहीं हूं। इसलिए आप मेरी उपेक्षा मत कीजिए, मैं भोजपति की दासी हूं न कि कंस की दासी हूं। अब जैसे कोई राष्ट्रपति भवन में सेवक है राष्ट्रपति का, तो वास्तव में व्यक्ति का सेवक नहीं है, राष्ट्रपति बदलेगा उसी का सेवक करेगा, है ना। वो सरकार का आदमी होता है, जो राष्ट्रपति बनेगा उसी की सेवा करेगा। तो मैं राष्ट्रपति की दासी हूं न कि किसी व्यक्ति की दासी हूं, ये कह रही है। मैं भोजपति की दासी हूं, वंश परंपरा से जो राजा होते हैं उसकी दासी हूं, कंस की दासी। त्वद विपुर नैव दासी अस्मि, मैं आपके शत्रु की दासी नहीं हूं, मैं कंस की दासी नहीं हूं। तो इस समय तो भोजपति वही है, हाँ, तो अगर उसकी दासी हूं तो वंश परंपरागत सिस्टम से दासी हूं, न कि मैं अपने मन से अभी देश। जुआन वांग रागानु लेप नारहो मतौ मम परस्तु दासी भावे नहीं तन्य तमता स्फुटन। आपके अलावा इस अंगराग का दूसरा कोई अधिकारी नहीं है, ये कह रहे अन्यतम नहीं है। तो इसमें इसके कहने का भाव ये है कि इस अंगराग के आप दोनों पात्र हैं। अगर कोई दूसरा पात्र है तो दासी भाव से पात्र है, दास होने से उसकी सेवा करनी पड़ेगी, बाकी हृदय नहीं। अन्य तमतः से ये ध्वनित किया जा रहा है। तो अगर दासी नहीं हो कंस की, तो कंस के लिए अंगराग क्यों ले जा रही है, प्रश्न होगा ना। दासी भाव से ले जा रहे हैं, दासी भाव का मतलब है कि अब पेड सर्वेंट हूं तो करना पड़ रहा है, यही हो रहा है वास्तव में। सरकार के जो आदमी हैं, कंपनी के हैं, चाहे खुशी के, दास भाव से कर रहे हैं, नहीं तो अगर इनको छुट्टी जितना मिले तो आनंद मानेंगे। अगर एक एक महीना की छुट्टी हो जाए तो ठीक है, सेवा की कोई भावना नहीं है, है ना। सेवा की भावना नहीं है, एक एक सिस्टम बना दिया गया है, करना है करना। जो लोग सरकार के कर्मचारी हैं, ये बात बिल्कुल फर्क है कि जितना ही ज्यादा छुट्टी मिले तो उनको उतना ही सुख है। अगर सेवा की भावना होती तो छुट्टी के दिन में भी जाकर करते ना सेवा, संडे को भी जाकर के सेवा करते। इसको कहते हैं दास भाव, नौकर हैं इसलिए कर रहे हैं। तो कुब्जा ने कहा कि मैं, अगर भगवान कहेंगे नहीं तुम भोजपति की दासी हो, तो करे दासी हूं लेकिन फॉर्मेलिटी में औपचारिकता में दासी हूं, बाकी हृदय से तो आपकी दासी। तो श्री भगवान प्रसन्न हो गए और अंगराग स्वीकार किए। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री हरिश्री जी कह रहे हैं, मेषस्यास्त निसर्गत किमपि वा रागादिकं जीववत्। ईशस्य श्री भगवान में, कृष्ण में जीववत्, जीव की तरह स्वाभाविक कोई राग है न द्वेष है किसी के प्रति। भगवान स्वयं ही कहते हैं न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, स्वाभाविक श्री कृष्ण में किसी के प्रति कोई राग आदि नहीं है। किंतु स्वीय जनाय माय भवति स्वीयच्छा श्रुत, लेकिन भगवान अपने भक्तों की इच्छा से इच्छा युक्त हो जाते हैं, अपने में कोई राग आदि नहीं। एतत् स्पष्टम अभूत जगत प्रपथि तद भव्य प्रदस्त तत्करा श्री कुर्बन रुचिरांग राग मकरोत कर्तुम तथा काम मन। भगवान अपने भक्त की इच्छा से इच्छा वाले हो जाते हैं, इसको व्यक्त करने के लिए ही भगवान श्री कुब्जा के हस्त कमल से अंगराग स्वीकार कर रहे हैं। भगवान को कोई कमी नहीं है, कोई स्वाभाविक राग नहीं है किसी के प्रति न द्वेष है, लेकिन वे भक्ति इच्छा से इस गुण से युक्त हो जाते हैं। सब पढ़ने में तो बहुत देर होगी, मैं कोई कोई पर पढ़ना। अच्छा, श्री भगवान कुब्जा के दोनों चरण को अपने चरण कमल से दबाए, इसमें क्या भाव था भगवान का? क्या संकल्प मात्र से कुब्जा को बिल्कुल सुंदरी नहीं कर सकते थे? क्यों सोच देते कि वो लक्ष्मी जी से भी बढ़कर सुंदरी हो जाए तो हो जाती? तो ये करने की क्या जरूरत थी? चरण से चरण को दबाए, हरीश्वर जी कहते हैं ये सब भाव होता है। पाद संपीडनम शूद्र धर्मम इत्याकलय स, चरण सेवा करना ये शूद्र का धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण शूद्र के जन्म स्थान है, शूद्रों के पिता है। और मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी जाती है, हुई है, और बाह से क्षत्रियों की, पेट से वैश्यों की, और चरण कमल से शूद्रों की। तो भगवान ने सोचा कि तो पाद संपीडनम, पैर संवाहन करना, मालिश करना, इसमें अब शूद्र को लगाना चाहिए। भगवान अपने चरण को पहले संमर्दन में लगाए। पद्भ्याम शूद्र अजाय, भगवान के चरण कमल से शूद्र उत्पन्न। जिस सेंस में आजकल शूद्र शब्द का प्रयोग होता है वो भाव नहीं है। वो शूद्र हो चाहे कोई हो, भगवान ही सबके मूल हैं। भगवान के चरण कमल से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, भगवान से कोई अलग नहीं है, भगवान से भिन्न कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को जन्म कोई दूसरा दे दिया हो, सबको जन्म भगवान दिए हैं, सबको पोष रहे हैं, सबको पाल रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है तो सेवा करनी है कुब्जा की, तो शूद्र को लगाया जाए। शूद्रों के जनक चरण को लगाया भगवान ने, चरण से दबाया। अथवा एक और भी बात कर रहे हरीश्वर जी की, भगवान ने देखा कि काम की स्थिति, कामदेव की स्थिति कुब्जा के शरीर में उस दिन पैर में ही है। दिन के अनुसार, समय के अनुसार काम की स्थिति बदलती रहती है, शरीर में किस जगह पर काम रहेगा। शायद भगवान ने सोचा कि आज काम इसके चरण में है, उसको दबाए काम को प्रज्वलित करने के लिए। काम का अर्थ हमेशा कृष्ण प्रेम समझना चाहिए। भगवान के प्रति ये भावना हो कि मैं इनके अंग का स्पर्श करूं, इनसे सुख लूं, तो ये बहुत महान बात है, सामान्य नहीं है। संसार की कुत्सित कचड़ा नहीं है। अतः इन शब्दों को बड़े सावधानी से सुनना चाहिए। फिर भगवान ने चरण संवर्ध किया। चरण, चरण का प्रयोग सेना के लिए भी किया जाता है। चरण, भगवान ने सोचा कि मैं वीर हूं और वैसे जन्म भी मेरा सूर वंश में हुआ है, ये काम करना चाहिए कि पहले चरण का संवर्धन करना चाहिए, सेना का संवर्धन करना चाहिए। ये हरीश्वर जी आज का चरण संवर्धन की सोचा कि मैं वीर हूं, वीर वंश में जन्म लिया है, इसलिए चरण संवर्धन कर रहे हैं। फिर सोच रहे हैं कि इस कुब्जा ने मुझे अंगराग दिया, अंग विलेपन दिया, इसने मुझे सकल भूमि सर्प समर्पण अस्य में, एक प्रकार से इसने समस्त भूमि मुझे अर्पण कर दिया। फलंत्या प्रतिमूल्य में रुचितम प्रभु अदात पाद जुगार्पण। तो श्री भगवान ने उसको दो नहीं, भगवान ने सोचा पाद का अर्थ होता है चौथाई, द्विपाद का अर्थ आधा। जब अनया कृतमंग विलेपनम सकल भूमि समर्पणम अस्य में फलंत्या प्रतिमिन्यो उचितम। इसने मुझे अंग विलेपन दिया, समस्त भूमि का दान कर देना, यही मेरे लिए उचित है। इतने दान के, इतना चंदन के लिए मुझे सब कुछ दान करना चाहिए इसको। सकल भूमि, सकल भूमि का अर्थ पूर्ण है, पूर्ण दान करना चाहिए। ये सोच करके भगवान उसके प्रति मूल्य के रूप में अपना पाद जुग अर्पण किए। भगवान के चरण में ही भूमि है ना। विराट रूप के वर्णन में बताया गया है भगवान के चरण में भूमि का निवास। तो पादौ महीयन, पादौ महीयन स्वकृतैव जत्र चतुर्विधा जत्र ही भूत सर्ग, चतुर्विधा जत्र ही भूत सर्ग। भगवान के चरण में भूमि है, तो भगवान ने दोनों चरण दिया कुब्जा को। ये भक्त का भाव है, भगवान कुछ तो आखिर सोच करके ही चरण रख रहे हैं ना, क्यों रखे। तो द्विपाद पाद जुग अर्पण दिया उसको। तस्या पाद द्वय स्वीयम स्वीय पाद द्वय समर्पण समर्पण संपूर्णांगन ध्रुवनम करो नीति भी बोलते हैं। उसके दो पैर मतलब चौथाई चौथाई आधा उसके पास है और आधा मैं दे करके इसको संपूर्ण रांगी करूंगा। भगवान ने मानव सूचित किया दो पाद उसके हैं और दो पाद मैं समर्पित करूंगा, चतुष्पाद चार पैर मतलब संपूर्ण। भगवान एक संकेत कर रहे हैं कि मैं इसको संपूर्ण रांगी करूंगा, पूर्ण अंग वाली। आधा उसके पास है ही, आधा मैं दूंगा, पूरा हो जाएगा। और भगवान ने चरण से चरण को दबाया और अंगुली से उठाया चेदुक को, मस्तक को। इसमें क्या आशय है भगवान का? अधो गतिर अर्दनने वपद्भ्याम अनुग्रहम चौधो गतिर करेगा। जो अधोगति में रहता है, अधोगति का अर्थ है जिसका हमेशा नीच कर्म ही रहता है, ये अद्भुत उपेक्षा है। जो अधोगति में है उसको पैर से भगवान मारते हैं और जो ऊर्ध्वगति में है, अच्छा काम कर रहा है, उसको अपने करकमल से उठाते हैं। तो मुख को उठाए और पैर को दबाए। अधोगति, गति का है काम, जिसका काम इस चरण का काम नीचे नहीं है। अधोगति से कोई कहें मतलब है कि नीचे रहता है, हमेशा जमीन पर चल रहता है ना, और मुख हमेशा ऊंचा रहता है। तो ऊंचे को ऊंचा उठाए और अधोगति में है तो इसको और नरक में फेंक रहे हैं। इसका मतलब ये है अधोगतिर अर्दनमे वुक्तम। ऊर्ध्वगति जिसकी है उसको उठा रहे हैं और अधोगति जिसकी है उसको और दबा रहे हैं। करोमि भूमौ इति बोधयन् सह द्वाभ्याम द्वयम् किम् अदधात् सलीलम्। क्या ये सोच करके भगवान अपने दोनों चरण कमल से कुब्जा के दोनों पैरों को दबाए? जो भी सोच करके दबाए होंगे, हम लोगों के लिए यही फल है कि हम उसका चिंतन करें कि भगवान अपने चरण कमल से कुब्जा के चरण को दबाए, बस इतना ही फल है। और ये क्या क्या सोच करके दबाए हो तो अनंत विचार भगवान में आ सकते हैं। कुछ को हरिश्री जी यहां व्यक्त कर रहे हैं। नैतन ममो प्रकृति तुल्य मतो ग्रहिष्ये नेदन त्वरिजु भवनमित अनुचिंत चेत नैवं कुरुष कुटिलं तुति सूचयन किं वक्रत्व भंग त्रदसौ चिबुकं दधार। समझ में नहीं आ रहा है। अब हरिश्री जी ग्रंथकार कह रहे हैं अपने तरफ से, ग्रंथकार की उक्ति सुनिए, ये बहुत सरस उक्ति है। कंसस्य तदंब राणी रज कंसस्येव तदंबराणि रजको धानंग रागोत्ययम् तुल्य तत्परिचारक ज्ञान तुल्य हम अर्थी द्वय। श्री कृष्ण बोल रहे हैं तत्राशिक्त दुरुक्ति रक्त भवती सर्वांग राग प्रदा सार इलम तो सिद्ध में चिव को देखते आशा सा चुको। भगवान ने उसके चिबुक को क्यों पकड़ा इस पर कह रहे हैं। भगवान क्या सोच करके उसके मुख के नीचे चिबुक पर अपने दोनों अंगुली से पकड़े। हरेश्वर जी लिखते हैं भगवान कह रहे हैं कंसस यही कदंब राणी रजको ढानी। रजक धोबी जो उन वस्त्रों को ला रहा था अभी आज की घटना है और केवल एक डेढ़ घंटा पहले की या आधा घंटा पहले भी हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि कंस के ही वो सब वस्त्र थे जिसको रजक ढो करके ला रहा था और ये अंगराग भी कंस का ही है जिसको तुम ले जा रहे थे। तुल्य तत्परिचार कहो कि तुम दोनों कंस के सेवक हो। तुल्य तुम दोनों रजक भी कंस का दास था और तुम भी कंस की दासी हो और दोनों से एक से वस्त्र मांगने वाला एक से अंगराग मांगने वाला वही मैं अर्थी हूं। मैं भी तुल्य रजक से मैं कपड़ा मांगा तुमसे अंगराग मांगा पर रजक से मुझे क्या मिला तत्रा सिद्ध सुदुरुक्ति मुझे और गाली मिला। जब मैं कपड़ा मांगा तो मुझे गाली मिला मुझ पर आक्षेप हुआ या हुआ लेकिन तुमसे जब मांगा तो तुमने अपने हाथ से मुझे अंगराग अर्पण किया। आहा तुम कितनी सरल हो कितनी शुद्ध हो। इन दोनों बातों को व्यक्त करने के लिए भगवान दो अंगुली से चिबुक पकड़ रहे थे। ये भगवान सोच रहे हैं आखिर वो कपड़े भी कंस के थे अंगराग भी कंस का धोबी भी कंस का सेवक तुम भी कंस का सेवक एक से मांगा तो एक ने मुझे गाली दिया आक्षेप किया और तुम इतनी सुंदर भाषा में उससे बोली और अंगराग दिया। अहो दोनों में कितना अंतर है। तुम बिल्कुल सरल हो शुद्ध हो तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। किसी के चिबुक को कोई पकड़ता है तो उसके प्रति स्नेह को व्यक्त करता है पकड़ते हैं। तो भगवान मानो ये बात कह रहे हैं। एक जगह कपड़ा मांगने पर नहीं मिला और यहां अंगराग मिला। वास्तव में सबका अपने कर्म के अनुसार गति होती है। एक और भी श्लोक में कहते हैं हरिश्री जी कि रजक के शरीर का नाश हुआ वो मारा गया और कुब्जा का शरीर जो खराब था उसका नव निर्माण भगवान ने किया बिल्कुल शुद्ध किया। देखिए व्यवहार भगवान का। एक का शरीर नष्ट खत्म जो भी था वो भी गायब और दूसरे के शरीर का पुनरुद्धार। व्यक्ति अपने कर्म से ही सब कुछ पाता है। एक ने भगवान का सम्मान किया दिया नहीं संसार में कोई भी कपड़ा है मिठाई है घर द्वार सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ किसी का नहीं है और वही प्रभु डायरेक्ट मांग रहे हैं कि कुछ कपड़ा दे दो। तो कपड़ा देना तो दूर की बात रहा गाली देना चालू की। उसके बाद ऐसा तमाचा लगा कि वहीं पर नहीं। भगवान कोई बेचारा नहीं है कि नहीं मांगे तो जाने दो नहीं दिए। ईश्वर है क्यों नहीं दोगे और नहीं दोगे उसके लिए नहीं मारे गाली क्यों दोगे। गाली देने का क्या अधिकार है। उसी बाजार में बीच नहीं सबके सामने उसका मस्तक इतना जोर से तोड़ दिए दूर जाकर के गिरा और उसके और लोग तो सब भाग चले अपने आप ही दे दिए। ये सारी वस्तुएं एक दिन अपने आप छोड़ करके मरना पड़ता है जाना पड़ता है। जब तक है तब से मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। हम लोग ट्रेन में देखते हैं कभी कभी 10 घंटे या 20 घंटे के लिए मेरा सीट मेरा सीट मेरा सीट और छोड़ना है छोड़ देते हैं, दूसरे दिन दूसरे लोग आकर के मेरा बर्थ नंबर मेरा बर्थ नंबर मेरा मेरा करते वो भी बीत जाएगा चले जाएंगे, तीसरे दिन और दूसरे दल आएगा। इस संसार की दशा है, इन वस्तुओं के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा शरीर के द्वारा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण मांग रहे हैं वास्तव में, जैसे कुब्जा से मांगे रजक से मांगे, भगवान मांग रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ते अप्रयच्छति। जो भक्ति से ये सब चीज मुझे देता है तो मैं उसको खाता हूं लेता हूं, ये मांगना ही हुआ ना, ये मांगना ही हुआ। हमको कोई पत्ता देता है, एक गिलास पानी देता है, फल देता है तो मैं इसको खाता हूं स्वीकार करता हूं। अगर नहीं मांगना होता तो भगवान कहते मैं नहीं लेता हूं, कोई देता है तो मैं लेता नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, मुझको कमी क्या है, मैं लक्ष्मी का भरतार हूं, सब कुछ मेरे पास है, मैं क्यों किसी का लूंगा, ऐसे कह सकते थे। लेकिन वो लेना चाहते हैं, भक्तिपूर्वक दिए गए उपहार को ग्रहण करना चाहते हैं, ये प्रभु की दया है कृपा है कि वो लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे प्रभु को देने में क्या हर्ज है, देना चाहिए, इसी में स्वभाव। देने वाले की क्या गति हुई, जिसने दिया उसको सारूप्य मुक्ति मिली, अक्षय धन मिला, आयु मिली, बल मिला, स्मृति मिली। सुदामा माली ने भगवान को माला दिया, चंदन लगाया, उसको ये सब मिला, और कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, तत्काल परम सुंदरी हो गई, तत्काल। देने का फल होता है, भगवान को दिया हुआ अनंत गुना फलता है। इन सब लीलाओं से सब शिक्षा दी जा रही है। तो भगवान ने कहा कि वो रजक भी कंस का दास था, तुम भी दासी हो, रजक के द्वारा लाया हुआ कपड़ा भी कंस का था, और तुम्हारे द्वारा तैयार किया हुआ अंगराग भी कंस का है, और दोनों के लिए जो अर्थी है मांगने वाला मैं सेम, लेकिन तुम कितनी सरल हो, कितना तुम्हारा प्रेमी हृदय है कि एक बार कहते ही तुमने अंगराग दे दिया। तो भगवान इसी से उसका चिबुक पकड़ रहे थे स्नेह दिखाने की। तद रूप मोहित धिया ही मयांग राग स्तुभ्यम हृदय मिथिलो की तदेद दाग ज्ञातवा करिष्यति निपह किमवेति भीति नैवा वहेत्य भय दस चिबुकम दभाव की। फिर हरीश्वरी जी कहते हैं क्यों भगवान ने चिबुक पकड़ा, दूसरी उपेक्षा कर रहे हैं, तुम ऐसा कभी सोचना मत कि तद रूप मोहित धिया ही मयांग राग, आपके रूप पर मोहित होकर के मयांग राग दे दी हूं तो और सारा दे दी, कोई बचाई नहीं कंस के लिए, सारा अंगराग दे दी, तो ये बड़ा कंस की दृष्टि से अपराध हुआ है। भगवान ने कह रहा है कि ऐसा मत सोचना कि तुमने मेरे रूप पर मोहित होकर के और सारा अंगराग दे दिया तो इसको जान करके राजा कुछ करेगा, ऐसा मत सोचना। ज्ञात्वा करिष्यति निपह किंवा इति भीति, ये भय मत करना। भगवान चिबुक पकड़कर कह रहे हैं मैं हूं ना, अरे कंस क्या करेगा, करो कंस निर्वंश मेट दो नाम निशाने, तुम्हारा कुछ नुकसान करेगा, इस सोच करके भय मत करना। अभी तुमने देखा ना, ये सुना होगा ना मेरे पराक्रम का वर्णन, कल ही कंस को मारने वाला हूं, कुबलैपीन को मारने वाला हूं, सभी पहलवानों को धूल में मिला दूंगा। भगवान ये कह रहे हैं भी भय मत करना, तुम मेरे रूप पर मोहित होकर के मुझे अंगराग दी हो तो कंस इसको सुन करके तुम्हारा कुछ करेगा, ऐसा मत सोचो। इस भाव से भगवान कुब्जा के चिबुक पकड़ रहे हैं, क्या सुंदर सुंदर भाव है। भक्त लोग इस तरह से भगवान की लीलाओं का मनन करते हैं। अब इसको हनु भी कहते हैं, सिबुक के नीचे, मुख के नीचे, इसको हनु कहते हैं, और इससे हनु से युक्त है उसको हनुमान कहते हैं, हनुमान। तो भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि जब मैं ये सिखा रहे हैं, सोच रहे हैं, जब मैं राम अवतार में शत्रु के नगर पर चढ़ाई किया था लंका में, तो हनुमान का आश्रय लेकर के, इस बार भी भगवान हनुमान का आश्रय लेकर के मथुरा में घूमना चाहते हैं। ये हरिश्री जी अर्थ कर रहे हैं, द्विशतपुर गताम पुरा प्रियतमाम अवापन क्षणा अहम हनुमद आश्रयादिति किमु स्मरण श्रीपति जिघिक्षु अचरा श्रेयम रिपुपुर अस्थिताम आददा तया हनुमदाश्रयम तब अभिक कानन प्रेक्षक। द्विशतपुर में गई हुई अपनी श्री को, श्री सीता देवी को मैं प्राप्त किया श्री हनुमान जी का आश्रय लेकर के, शायद उसी लीला का स्मरण करके इस बार सोचते हैं कि इस नगर में जो श्री है, धन है, राज्य है ना जिस पर कंस बैठा है, यहां का धन भी मैं हनुमान के आश्रय से ही लूंगा, ये विचार आया होगा भगवान में, तो हनुमान हनु का आश्रय ले रहे हैं। जहां न जाए रवि तहां जाए कवि, इसको विद्वान कहते हैं कवि। हर एक बार धन लेने के लिए, श्री लेने के लिए हनुमान का आश्रय लिया, तो इस बार भी वासह श्रगाभरण चंदन धारणी में, तो श्री भगवान उसके मुख के पास अपना मुख कर रहे हैं, उसे उंगली से उठा करके, तो कुब्जक का मुख परम सुंदर सामने आया, और भगवान के सामने तो वो चंद्रमुखी परम दिव्य मुख है, शीशे की तरह चमक रहा था मुख। तो हरिश्वर जी कहते हैं भगवान क्यों चिबुक पकड़े, सिबुक को पकड़े क्यों, तो ये कहते हैं वासह सर आभरण चंदन धारणे न, मुझे कपड़ा बहुत अच्छा मिला है, भगवान ने सोचा, और आभरण मिला, चंदन धारण किया हूं, माला धारण किया हूं, तो मैं कितना सुंदर हो रहा हूं, इसको कुब्जा के मुख रूपी दर्पण में भगवान देखना चाहते हैं, सुंदर मुख में अपनी छवि देखना चाहते, क्या इसके लिए शीशा उठाए, शीशा के नीचे दर्पण के नीचे डंडी होती है, तो उसको पकड़कर ऊंचा करते हैं, अपना मस्तक देखते, तो भगवान मानो इसके लिए थोड़ा शीशा ऊंचा किए, अपना सौंदर्य देखने के लिए। वैसे परम सुंदर है सब समय, लेकिन नया श्रृंगार धारण किए हैं तो कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि मैं और सुंदर हो गया हूं। वासह कपड़ा मिला है नया, श्रक मालाएं मिली है, आभरण श्रृंगार अलंकार और चंदन धारणे में, किद्री नदीनम मैं कैसा नया हो गया हूं, अति सौष्ठम आगतम मुझमें सुंदरता आ गई है, द्रष्टुम तदास मुकुरे विमले जशोभे तन्मूल दंड चिरुकम करतो विभव की। क्या भगवान अपने मुख कमल को देखने के लिए कुब्जा के मुख रूपी दर्पण में, मुख कमल में उसको ऊंचा उठाए, नीचे मुख था, मुख तो पहले से ही बहुत सुंदर था कुब्जा का, लेकिन ऐसे झुका था तो कृष्ण उसमें देख नहीं सकते थे, तो अपने मुख कमल की शोभा को देखने के लिए क्या कुब्जा के मुख को उठाए अपने दोनों उंगली से, क्या कहकर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है उसके लिए उठाए। ये है विद्वत महान विद्वान भक्तों की उक्तियां हरिश्वरी जी की। वास्तव में इस तरह से भगवान की लीलाओं के चिंतन का एक अवसर देना कि पढ़ने वाला सोचने लगे, जितने इन उक्तियों के उक्तियों का ज्ञान न होने से हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि भगवान कुब्जा के मुख को क्या इसलिए उठाए कि अपना सौंदर्य देखने के लिए, क्योंकि नया नया श्रृंगार हुआ था, चंदन लगाए थे तो देखना चाहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं। मैं नवीनम अति सौष्ठवम आगतम, मुझमें सुंदरता आ गई है, सौष्ठव आ गया है, कैसा आया है जरा देखो। भगवान ने प्रतिदिन ऐनक देखते हैं ना, भक्त लोग उनको दिखाते हैं श्रृंगार आरती के बाद दिखाते हैं, तो श्री भगवान अपना बिगड़ा हुआ श्रृंगार स्वयं कर लेते हैं। ऐसे ऐनक दिखाने पर ये परंपरा है श्रीनाथ जी में आज भी कि ऐनक उनको दिखाया जाता है दर्पण तो बता देते हैं कि कोई श्रृंगार ठीक नहीं हुआ है तो फिर से किया जाता है। जैसे लक्षण ऐसे बता ही देते हैं कि ठीक नहीं हुआ है, एकदम प्रकट श्रीनाथ जी हैं, भगवान हैं वहां पर। तो श्रृंगार के बाद किसी किसी दिन संकेत करते हैं नहीं ठीक नहीं है, तो अपने से अपना देखते हैं ऐनक में दर्पण में तो बताते हैं ठीक नहीं, तो पुजारी फिर से श्रृंगार करते हैं। आज भी ये परंपरा है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पुजारी अपने से सोच लेता है कि हाँ फिर से करे एक, नहीं, श्रीनाथ जी संकेत कर रहे, अपनी सुंदरता देखने की इनको आदत है, मैं इतना सुंदर हूं कितना सुंदर, अपना सौंदर्य देखने के लिए अनुभव करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, अपने रूप पर मोहित है, अपने नाम पर, अपनी भक्ति पर। तो भगवान कुब्जा के मुख कमल में अपनी छवि देख रहे हैं, स्वाभाविक है सोचना इस बात को, तो क्या इसके लिए उसके मुख कमल को उठाया, किन शब्द लगा करके हरि से जी कहा क्या इसके लिए उठाया। हाँ, आप जो सोचेंगे वही सत्य है वास्तव में। मुख्यांग सेवनम रिते परमंग जातम स्वाम वक्रतां त्यजत नेति विभाव्य नीति कर्तुं तदंग मखिलं सरलं परात्मा सन्मुख मंगम भजत चिबुकम करेण। मुख्य अंग का सेवन छोड़ करके अगर मुख्य जो अंग है उसको न सुधारा जाए तो कोई व्यक्ति अपनी वक्रता छोड़ नहीं पाता, ये नीति है। तो उसके सारे शरीर को सुंदर बनाने के लिए, सरल करने के लिए भगवान मुख्य अंग को, चिबुक को हाथ से पकड़े। मुख्य अंग का मतलब मुख्य संबंधी अंग है। तो मुख्य अंग का मतलब है प्रधान अंग, और यहां मुख्य अंग का अर्थ है मुख में जो स्थित है वह अंग चिबुक। क्या ये सोच करके भगवान ने चिबुक पकड़ा है? जत प्राक चकार भवती वनवास दानम मह्यम मयापि गणितम भृषमिष्ट कृत प्राग्भुक्त बन वसते नमना धुना तु देयम मुधेत सदयम चिबुकम दधार। और श्री राम अवतार में कुब्जा का स्मरण हो गया भगवान को तो कहते हैं चिबुक पकड़ करके, मानो भगवान ये सोच रहे हैं जब प्राक प्राकार से पूर्व जन्म में जब मैं श्री राम के रूप में अवतार लिया था तो उस समय तुमने मुझे वनवास दान दे दिया 14 वर्ष के। वही नहीं है वास्तव में कुब्जा, लेकिन कुब्जा इस तरह से जाति वाचक बोल रहे हैं, तुमने मुझे वनवास दिया, मह्यम वनवास दिया, ममापि गणितं भृशमिष्ट कृतम, लेकिन वनवास दिया तो मैं उससे रंग नहीं हुआ क्योंकि वनवास से ही मैं अपना इष्ट पूरा किया, रावण का वध किया, ऋषियों को सुखी किया, बहुत अच्छा हुआ, तुमने मुझे वनवास दिया मैं उसके लिए भी रंग नहीं था। तो जब प्राप्त चकार भवती वनवास दानम मह्यम मयापि गणितम भृशमिष्ट कृत प्राग्भुक्त वन्य वसते न ममा धुना तू देयम मुधेक सदयम चिवकम दधारा, लेकिन अब वनवास मत देना। ऐसे वनवास दिया बहुत अच्छा हुआ, मैं पृथ्वी का भार दूर किया, रावण वध आदि किया, अच्छा हुआ, अयोध्या में रहकर क्या करता, लेकिन फिर अब मत देना वनवास। शायद ये हंसी करने के लिए भगवान उसके चिबुक को पकड़ कर कहते हैं कि अब मत दीजिएगा वनवास। रसापहरणम पुरा कृतम अनागसस्य प्रभो मया कुटिलया फलम तद भुज्यते स्फुटम विधाय सुरसार्पणम पुनरनामयम श्यामिति हृदय स्थितम अवेदित चिबुकम एतदर्थम दधे। भगवान ने चिबुक क्यों पकड़ा, कई प्रेक्षक करो, कई भाव लिख रहे थे, यहां पर भाव सुनिए, देर नहीं हो रही है ना, देर हुआ तो कथा, कथा के लिए आए है ना, यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए देर थोड़े मानी जाएगी, और आरती वगैरह पीछे होती रहेगी, कथा मुख्य है। तो तुम सोच सकती हो कि मैंने पूर्व जन्म में श्री राम जन्म जब आप लिए थे तो रसा का अपहरण कर लिया, रस का अपहरण किया, रसा का, रसा पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी का अपहरण कर लिया, मतलब भरत को राज देने की बात कहकर के आपको राजा नहीं बनने दिया। भगवान मानो ये कहें तो ऐसा सोच सकती हो कभी मन में कि तुमने पूर्व जन्म में पृथ्वी का अपहरण किया, रस का अपहरण किया, मैं अपराध नहीं किया, फिर तब अनागसस्य मुझ श्रीराम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन मैंने पृथ्वी का अपहरण कर लिया, रस का अपहरण कर लिया, तो उस कर्म का फल मैं भोग रही हूं, कुब्ज हो गया, क्या क्या हो गया, तो विधाय सुरसार परम पुनरनामया श्यामिति, मैं फिर से रस अर्पण कर रही हूं, रस का अपहरण किया, रसापहरण मतलब रसा अपहरण या रस अपहरण, उस बार जो रस मिलने वाला था, जो रसा, पृथ्वी सर्व रसमय है इसीलिए इसको रसा कहते हैं, तो रस का अपहरण किया उस बार, और इस बार रसार्पण कर रही हूं, ये कह करके मैं अनामय हो जाऊं, निर्दोष हो जाऊं। उसके हृदय में स्थित इस भाव को भगवान करण, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में है, तो तुम बिल्कुल निरामय हो, बिल्कुल निर्दोष हो चुकी हो, ठीक है, इसके लिए चिबुक पकड़े। करांगुजम जैन पुराग लंबितम श्रीयो गजेन्द्र सचा सुयमुज्ज्वल मुखांबुजम कांक्षति ते समुत्सुक करो मया आशयस्तथा दधे। करांबुजम जैन पुरा अवलंबितम श्रीयो गजेन्द्र सचा सुयमुज्ज्वल, जो मेरा करकमल हाथ पहले श्री को अवलंबन दिया, श्री का हाथ मैंने पढ़ा, श्री का करांबुज पकड़ा, अपने करांबुज से, अपने करकमल से श्री का करकमल पकड़ा, और गजेंद्र का करकमल लिया। करकमल का अर्थ है कि गजेंद्र के कर से अर्पित किया हुआ कमल मैं लिया, वह करांबुज का ही अर्थ, गजेंद्र ने भगवान को अर्पित किया था कमल, तो गजेंद्र के उस कमल को मैं स्वीकार किया और श्री के कर कमल को स्वीकार किया, लेकिन कर कमल तो मुझे मिला पर श्री का मुखांबुज नहीं मिला। मुखांबुजन कांक्षति में ते समझ चुका, मेरा हाथ मुखांबुज चाहता है, मुख कमल चाहता है, करांबुज तो मैं लिया, श्री करग्रह श्री जी का करांबुज लिया, गजेंद्र का करांबुज लिया, लेकिन मेरा हाथ मुखांबुज चाहता है। शायद इस आशय से भगवान ने ये काम किया, आशय का अर्थ है हाथ, यहां से यहां तक हाथ को आशय कहा जाता है संस्कृत में, भगवान अपने इस यह आशय व्यक्त करने के लिए अपने आशय को मुखाम्बुज पर किए, मेरा हाथ मुखाम्बुज चाहगा। भगवान आसक्ति पूर्वक छू रहे हैं मन किसी परम सुंदरी स्त्री को, जो परम सुंदर मुख वाली स्त्री को, उसके मुख को पकड़ना। लड़का वृंदावन का मथुरा की कोई परिचय कुछ नहीं है, और न तो समाज में कोई पढ़ने हुआ विवाह हुआ, और चिबुक पकड़ रहा है, तो हाथ को इच्छा है ना कर मुखाम्बुज की। भगवान ये व्यक्त कर रहे हैं चिबुक पकड़ करके कि बलि महाराज ने पहले मुझको दिया, रसार्पण किया, रसा अर्पण, पूरा भूमि दान दे दिया। हमको रस किसने किसने दिया है, इस शब्द से हरिश्री जी ये सब उपेक्षा कर रहे हैं। बलि ने हमको रस अर्पण किया, रस अर्पण किया या रसार्पण किया, संधि करने पर तो रस अर्पण और रसा अर्पण दोनों होगा। मह्यम प्राग बलिना रसार्पणम यह प्राकार जातः करस तेनादो न शरीर मतु रसस्पर्शे न साद्रम बपु। दो लोग रस दान दिए मुझको, एक तो बलि महाराज और दूसरी बात तुम, लेकिन दोनों के रस दान में तुलना कर रहे हैं भगवान। बलि महाराज हमको दान दिए, भूमि में रस अर्पण किए, तो उससे हमारा हाथ तो आर्द्र हुआ, इस पर जल डाले थे तो हाथ आर्द्र हुआ, लेकिन शरीर ठंडा नहीं हुआ। पर तुमने ओहो इतना दान दिया, इतना रस अर्पण किया कि शरीर सांद्र हो गया, तो अवश्य बलि महाराज के रस अर्पण से तुम्हारा रस अर्पण कई गुना श्रेष्ठ। केवल हाथ भीजा था उस समय, और इस बार पूरा शरीर आर्द्र हुआ है इस रस। तो तुम धन्य हो, तब दातृत्व गुणा तमेव महमप्यर्थी च सत्यस्तवई यति द्वयंगुल चिन्हितम विसर्जन उत्तान पाणिम व्यधात। अपने हाथ को उत्तान करके दो अंगुली से ये सिद्ध कर रहे हैं, एक तो दान दिया बलि ने और दूसरा दान दिया तुमने, लेकिन तुम्हारा जो दान है वो बलि से कई गुना बढ़ करके, इसको भगवान व्यक्त कर रहे हैं। और एक भाव और हरिश्री जी लिख रहे हैं कि एकत्र कोटलता गोप्या, एक तरफ मेरी प्रियाएं गोपियां हैं, एक एक कोटि की हैं, और मथुरा में केवल तुम हो मेरी, ये दो ही मेरे प्रिय मिले दो प्रकार। इसको व्यक्त करने के लिए अपने दोनों अंगुली से उसके चिबुक को पकड़ रहे, शायद ऐसा है क्या, हरिश्री जी कहते हैं। भगवान से प्रेम करने वाली स्त्रियां ब्रज में हैं, वो एक कोटि में रख रहे हैं, और मथुरा में प्रेम करने वाली केवल एक स्त्री अभी तक है। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन और होंगी बाद में, विवाह होगा, सब होगा। संसार की सभी स्त्रियां भगवान से प्रेम करती हैं, तो एक तरफ कुब्जा है, एक तरफ श्री राधा आदि हमारी प्रियाएं, दो कोटि का स्मरण कराने के लिए कह रहे हैं, दो अंगुली उठाए। तो भगवान के छूते हैं कुब्जा बिल्कुल सुंदरी हो गई, सरल हो गई, तो इस पर कहते हैं मत पाद भाजन न सता मती संदर्शनम मुख्य फलम क्वचित स्यात्, संदर्शनम भूमि अफलम क्वचित स्यात्, तत्स्वामिनो में सकलर्धि भाग कथम तथा शायद तत्पथा भाग। तो भगवान ने दर्शन का फल दिखाना चाहा, तो इसमें ये कह रहे हैं श्री भगवान कि मेरा दर्शन तो दूर की बात है, मेरे भक्तों का दर्शन भी कभी अफल नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है। तो मैं तो सकल विद्यों का, समस्त समृद्धियों का मूल हूं, स्वामी हूं, मेरा दर्शन कैसे विफल जा सकता है। भगवान ये दिखाने के लिए इस तरह से उसको सीधा किए। क्यों सीधा किए, अगर टेढ़ाई छोड़ देते तो क्या होता, हरिश्री जी तो उपेक्षा करते ही जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि बेटा के द्वारा अगर कोई गलती कर दी गई है तो बाप का धर्म है कि उसकी गलती को सुधार। ये विधाता ब्रह्मा मेरा बेटा है, गलती किया, कुब्जा के शरीर को बनाया, तो मेरा धर्म है कि बेटा की गलती को सुधार दूं। ठीक किया उन्होंने। जो विधाता के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ शरीर था उसको ब्रह्मा के पिता ने ठीक कर दिया। ब्रह्मा जी पुत्र है ना भगवान के, भगवान ने ब्रह्मा से कुछ कहा ना, सोचा बेटा बेचारा ऐसे तो है चारों वेदों का विद्वान सब, लेकिन इसका कर्म देख करके जैसे तैसे गलत शरीर बना दिया, वो गलत कर दिया, लेकिन मैं उसको ठीक कर लूंगा। हरिश्वर जी कहते हैं, पुत्रेण जत कृतम असाधु तदस्त तंद्र कुर्या पिता भूलि यथा भविता अनुवद। पुत्र के द्वारा कोई गलती हो गई है तो जैसे पिता अनालस होकर के उसको ठीक कर देता है। जुक्तम विरंच रचितम कुटला नमस्या चक्रे रिजु स्वकर्त सही पद्मनाभ। वाह, ब्रह्मा जी के लिए विरंची और भगवान के लिए पद्मनाभ शब्द का प्रयोग कर। पद्मनाभ का अर्थ ही है कि भगवान के नाभि से, पद्म से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। तो भगवान पद्मनाभ ने सोचा कि विरंची के द्वारा इसका शरीर टेढ़ा रच दिया गया तीन जगह से और कुबर बना दिया गया, ये ठीक ही किया कि भगवान पद्मनाभ अपने हाथ से अपने बेटा के द्वारा की गई गलती को ठीक कर दिया, तो कुब्जा को ठीक कर दिया। अब हरिश्वरी जी अद्भुत प्रभाव का वर्णन कर, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि मुकुंद के छूने से सब ठीक हो गया। तो जन नाम स्मृति रक्त अस्मिन मनोवाग वक्रताप हृत किमतम चित्रम तद वक्रम अवक्रम तत्करादभूत। अरे जिनका एक बार नाम बोलने से और सुनने से मन वाणी और शरीर की वक्रता चली जाती है, टेढ़ातन चला जाता है, सारा पाप चला जाता है, और वही प्रभु जिसको हाथ से छू दे तो अब वक्रता क्या रहेगी। यहां वक्रता का अर्थ है पाप, वासना, टेढ़ा, कुटिलता सब। तो भगवान का नाम स्मरण करने से, जन नाम स्मृति कृत, जन नाम स्मृति अपि, जिनका नाम स्मरण करने से ही, उच्चारण करने से, श्रवण करने से, मन में स्मरण करने से, मनोवाग वक्रता पहित मन और वाणी की सब कुटिलता का दोष को हर लेता है। किमत्र चित्रम तद गात्रम अवक्रम तत्करादभूत। ये इसमें क्या आश्चर्य है कि ऐसे प्रभु के कर कमल के स्पर्श से कुब्जा के शरीर की कुटिलता चली गई, तो ये कौन आश्चर्य है जब मन की कुटिलता, वाणी की कुटिलता चली जाती है नाम स्मरण से। तो साक्षात छूने से अगर शरीर का टेढ़ापन खत्म हो गया तो ये कौन आश्चर्य की बात, कोई आश्चर्य नहीं। तीन दान दिया था, तीन काम किया था त्रिवक्रा ने, इसलिए भगवान उसका त्रिताप, त्रिवक्रताप, त्रिवक्रता अपहरण की, तीन ताप हरे। हरिश्वर जी कहते हैं, मृदु भाषा पहला दान दिया, इतना स्नेह से बोली थी कुब्जा, उसको मृदु भाषा एक, अंगराग अर्पण दो, और अपने हाथ से अंगराग लगाना तीन, तीन सेवा किया था उसने। मृदु भाषा अंगरागार्पण निज करा तद विलेपन त्रितया, तीन सेवा करने से तुष्ट श्री सह, संतुष्ट होकर के श्री सह, श्री के पति श्री भगवान, अथ अदात प्रतिनिधिवत उसके मूल्य के रूप में, तीन सेवा के मूल्य के रूप में उसके त्रिवक्रताप हृति, त्रिवक्रताप हृति, त्रिताप का हरण कर लिए। ये वक्रताप है, आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक बहुत भीषण ताप है। वक्र का अर्थ होता है कठिन, तीन ताप उसके हर लिए, त्रिवक्रता अपहृति, चाहे त्रिवक्र ताप हृति आहृति। ये संस्कृत जो जानते हैं वो इसका आस्वादन करेंगे। त्रिवक्रता अपहृति और त्रिवक्र ताप हृति, तीन प्रकार के विषम ताप का, दुख का हरण किए, या त्रिवक्रता अपहृति, तीन जगह के टेढ़े शरीर की टेढ़ापन को दूर कर दिया, तीन सेवा किया था कुब्जा ने, भगवान से मृदु भाषण बोलना, भगवान का कीर्तन करना, जप करना, उनकी सेवा है, और दूसरी सेवा थी अंगराग देना, तीसरी सेवा थी अपने हाथ से उसका दिलेपन, अपने श्री हाथ, अपने हाथ से भगवान के शरीर पर लगाई थी। तो इनके प्रतिनिधि के रूप में, तीन सेवा के फल के रूप में भगवान ने तीन प्रकार का ताप हरण किया। त्रिवक्रता अपहृति या त्रिवक्रता अपहृति अयति, त्रिवक्रता अपहृति, त्रिवक्रता अपहृति ये किया तो ठीक ही किया भगवान ने। अब देखिए हरिश्वर जी के अंतिम उद्गार को सुन करके पद कह करके हम बंद करेंगे। सत असदपि फलम वा आत्मतलम स्व स्वभाव जगति ननु जसुन्ना न हेतु परेश स्फुटमिह रज को जद वर्ष नाशम सुवृत्या समलभक तथा सा दिव्य देहं तु कुब्जा। इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी फल मिलता है सत असत, वह व्यक्ति अपने स्वभाव से ही पाता है, उसमें भगवान कुछ नहीं करते हैं। हरिश्री जी कह रहे जगत मन जसुन्मान जनुष्मान नात्र हेतु परेश, इसमें इस जगत में जन्म लेने वाला जीव अपने स्वभाव से सब प्राप्त करता है, भगवान इसमें कारण नहीं। स्फुट नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई कि रजक अपने स्वभाव से वर्ष नाश को प्राप्त हुआ, उसका शरीर वर्ष माने शरीर नष्ट किया गया, और अपने स्वभाव से कुब्जा दिव्य देह प्राप्त की, भगवान कुछ नहीं किए, सब अपने कर्म से अपने स्वभाव से लोग प्राप्त करते हैं। रजक अपने स्वभाव से शरीर का नाश पाया और कुब्जा ने दिव्य देह पाया, भगवान का प्रसाद स्वरूप देह, सभी अपने कर्म का फल पाते हैं। ये उत्प्रेक्षा है हरिश्री जी की, बहुत सुंदर लगता है हमको। इसमें आ सकते पहले भी बहुत उत्प्रेक्षा किए थे लेकिन मैं कहने में फंस गया, मुझे भूल गया, और सब टाइम भी नहीं मिला। नहीं तो सुदामा जो भगवान से बात करते हैं, सुदामा माली, वो अद्भुत है, मेरा गर्भस्थ सफल हो गया, मेरा ये हो गया, बहुत सुंदर वचन बोले। कभी कभी लोग शंकाएं किया करते हैं, पूछते हैं ये हरिश्वर जी कौन, ये हरिश्वर जी कौन है, उनके उनके पुस्तक बता रही है कि कौन है। भगवान कृष्ण में परम आसक्त एक भक्त हैं, और भक्त ही नहीं इसके साथ महान कवि है, विद्वान, एक काव्य में टीका लिखे, संस्कृत कविता में टीका लिखे। कभी कोई पूछते हैं तो उनको शंका नहीं करनी चाहिए, ये ग्रंथ देखना चाहिए, ग्रंथ इस कवि का परिचय देता है। पहले के लोग अपने विषय में कुछ लिखते नहीं, उनका स्वभाव होता था। जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने विषय में लिखे हैं, मैं कौन हूं, लिखते हैं पूरी से रकीट है तो मुई से लघिष्ट, मल में रंगने वाले कीड़े से भी मैं बिल्कुल हूं, और जगाई मधाई है तो मुई से पापिष्ट, और मैं जगाई मधाई से भी बढ़कर के पापी हूं। क्या कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन भक्त अपने विषय में ऐसा ही लिखते और कुछ नहीं लिखते। ये नहीं कि अपनी बायोग्राफी, अपना किताब तैयार हो गया, भागवत पढ़ने का समय ही नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। अपने विषय में केवल इतना ही लिखे हैं कि मैं भगवान की गुण गाथा गाने जा रहा हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं, मेरी भाषा में कोई अलंकार नहीं है, छंद नहीं है, रस नहीं है, कोई योजना नहीं है, लेकिन एक ही गुण है मेरी कविता रूपी स्त्री में, इसके पति हैं भगवान श्री कृष्ण, इस कविता रूपी नारी के पति हैं श्री कृष्ण, हमने कृष्ण का गुण गाया है। वो कहते हैं कि जैसे किसी महिला के ललाट में और शरीर पर कोई श्रृंगार ना हो, केवल कुमकुम है, सिंदूर है, तो उसके सौभाग्य का परिचायक है, भले कोई गहना ना हो। वैसे हमारे कविता में भले कोई गुण नहीं है, लेकिन इसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय है श्रीपति, तो ये सौभाग्यवती कविता है, मतलब भगवान का गुण मैं गाया हूं। और कुछ भी अपने विषय में नहीं बताते हैं, उनके विषय में कहीं पता चलता है कि नासिक में रहते थे और इससे सिद्ध हुआ कि ये महाराष्ट्र के थे। ये महाकवि, इनका नाम था हरि, पर इनको टाइटल दिया विद्वानों ने सूरी, मुह्यम तेजत सूर्य, सूरी कहते हैं महान विद्वान शास्त्रज्ञ को। तो सूरी तो टाइटल है, वास्तविक नाम था हरि, उसे हरि सूरी कहते। तो इनकी कविता है और ये भक्तों के सामने प्रस्तुत है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और बारे में न तो लिखे न कुछ प्रचार किए, तो सोचकर क्या करेंगे। जो फल आना चाहिए, फल सामने है, इन कविताओं का पठन करके, श्रवण करके मन कृष्ण की लीला में हंस जाता है, आकर्षित होता है, भगवान के अंगों का स्मरण होता है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। केवल सवा साथ हुआ है। हरे कृष्ण।